आजकल आजकल कोई भक्त नहीं देखे पर क्या बात है ना, आज भक्त कोई देखे नहीं कर रहा है, डिवोटी आज कोई देखे नहीं कर रहा है।
আমার জীবন সদা পাপের রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। আমার জীবন আমার জীবন সদা পাপের রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। আমার পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ। আমি দিয়াছি আমার জীবন সদা পাপের রত, নাহি কো পুণ্যের লেশ। আমার পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি দিয়াছি জীবে রে ক্লেশ। দিয়াছি নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরে, দয়াময় স্বার্থ পর নিজ নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরে, দয়াময় স্বার্থ পর নিজ সুখ লাগি। পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাসি, পরে পর দুঃখ সুখ কর, পর দুঃখ পর ਤਾਰਾ ਦੁਖਾ ਸੁਖ ਤਾਰਾ ਅਦੇਸ ਕਾਮਨਾ ਹੁਦੀ ਮਾਤਨੀ ਹੁਦੀ ਸੰਭ ਪਰਾਯ ਮਦਮਤ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਮੋਹਿਤ ਮਦਮਤ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਗਰਭ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਿਦ੍ਰਾਲਸ੍ಯ ਹਤ ਕਾਰ್ਯ ਵਿਰਤ ਅਕਾਰ੍ಯ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਾਗਿਆ ਸਾਖ ਚਰਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਾਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਾਗਿਆ ਸਾਖ ਚਰਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਾਗਿਆ ਲੋਭ ਹਤ ਸਦਾ ਕਾਮਿ ਲੋਭ ਇਹ ਨ ਦੁਰਜਨ ਸੱਜਣ ਬਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰ್ਯ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਸਦਾਨਾਥ ਮਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰ੍ਯ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਨਾਨਾ ਦੁਖੇ ਜਰ ਜਰ ਨਾਨਾ ਬਾਧ ਕੇ ਖਨ ਉਪਾਯ ਵਿਹੀਨ ਕਾਟੇ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਧ ਕੇ ਖਨ ਕਾਤਿ ਦਿਨੋਦ ਪ੍ਰਭੁਰ ਚਰਣੇ ਭਕਤਿ ਦਿਨੋਦ ਕਰੇ ਆਤਮਨਿਵੇਦਨ ਕਰੇ ਆਤਮਨਿਵੇਦਨ ਆਮਾਰ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਆਮਾਰ ਆਮਾਰ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਬਾਬੂ ਪਰੇ ਉਦਵੇਗ ਦੀਆ ਕਤ ਪਰੇ ਉਦਵੇਗ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰਿ ਰਾਮ ਹਰਿ ਰਾਮ 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 ਹਰਿ 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 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannath,
परमहंस परिव्राज काचार्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गुरु गोपीनाथ राधा कृष्ण श्याम कुंजरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप माया प्रधान की जय। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ओम मेरा जीवन सदा पाप पुण्य कार्य में व्यतीत हुआ, अतएव मुझ में पुण्य लेस मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पुण्य कार्य करने के लिए डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अत्यंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार में मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचार से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु स्वार्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी के अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के बस में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुष ने भी मुझे त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराध में रत रहता हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्म से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। शील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमल में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जो कहते हैं कि मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, इसका अर्थ भौतिक धन संपदा नहीं है। कौन सा धन संपदा है? भक्ति रूपी धन संपत्ति, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो संपत्ति, यानी कि भौतिक धन संपत्ति के बारे में नहीं कह रहे कि मेरे पास कुछ भौतिक संपत्ति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमल में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सह गणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
રામ રામ હરે હરે.
એક ગ્લાસ મેં પાણી રખ સકતે બોટલ એસે બેઠા કે ક્યાં હૈ અભી જરૂરત નહીં. તો આ તીસરે દિન તથા અંતિમ દિન હૈ સેમિનાર કે. પહેલે હમ આલોચના કર ચુકે હૈ દુષ્કૃતિ જાત અનર્થ, સુકૃતિ જાત અનર્થ ઓર અપરાધ જાત અનર્થ. આજ ભક્તિ ઉત્થ યા ભક્તિ જાત અનર્થ કે બારે મેં ચર્ચા કરેંગે. ભક્તિ કરને કે સાથ સાથ ભી કિસ અનર્થ અમાર સાથ મેં સાથ સાથ ચલતે હૈ તો દેખાઈ પડતા કે ભક્તિ જૈસે, લેકિન વો ભક્તિ નહીં હોતે હૈ. ભક્તિ લતા જૈસે દેખાઈ પડને પર ભી વો ભક્તિ લતા નહીં હોતા હૈ, ઓર કુછ હોતા હૈ. જૈસે અબ ધાન જો ગાંવ મેં સે ખેતી મેં દેખો, ધાન કી ખેતી મેં ઓર એક પેડ ભી એસે ઉગતા હૈ જો ધાન કી પેડ જૈસે એક્ઝેક્ટલી એસે દેખતા હૈ. ક્યા બોલતે ઉસકો મરાઠી મેં? ઓડિશા બંગાલ મેં ઉસકો કહેતે બાળુંગા. તો ઓડિશા બંગાલ મેં કહેતે, લેકિન એ લોકો અલગ કુછ કહેતે. મરાઠી મેં ક્યા બોલતે? એક્ઝેક્ટલી ધાન કે પેડ જૈસે દેખાઈ પડ ગયા, લેકિન વો ધાન કા પેડ નહીં હોતા હૈ. ઉસકો ઉખાડ કે ફેંકના પડતા હૈ ખેતી સે. વો ફિર લોગ જાતે ઉસકો જો દેખતે હૈ પહેચાન કર, ફિર ઉસકો ઉખાડ કર ફેંકને કે બાદ ફિર ધાન કા જો પેડ હૈ વો અચ્છા સે બઢતા હૈ. તો ઇસલિયે ભક્તિ કરને કે સાથ સાથ હી ઉસ એસા હી ઓર કોઈ લતા એસે ભક્તિ લતા કે સાથ બઢતા હૈ તો ભક્તિ લતા જૈસા હી દેખાઈ પડતા હૈ. લેકિન ભક્તિ લતા નહીં હોતા. ભક્તિ કો એક લતા કે સાથ તુલના કરતે હૈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જો રૂપ ગોસ્વામી સિખા દેતે હૈ. કહેતે કે ભક્તિ લતા બીજ ગુરુ સદગુરુ સે ભક્તિ લતા કી બીજ પ્રાપ્ત હોતા હૈ. ઓર શ્રવણ કીર્તન બીજ કો અંકુરિત ક્યા જાતા, ફિર આસ્તે આસ્તે ભક્તિ લતા ઉગ કર આગે બઢતે જાતા હૈ. લેકિન ભક્તિ લતા જો બઢ કે જાતા બઢતે જાતા ઉસ સાથ મેં ઓર ભી કુછ એક લતા એસે હી ઉગતા ઉસી પાસ મેં જળ જો ડલા જાતા હૈ તો શ્રવણ કીર્તન જળ દૂસરે કુછ એસે લતા ઉસકી સાઈડ સાઈડ મેં ઉગતા હૈ ઓર વો ભી ભક્તિ લતા કે સાથ એસે આગે બઢને શરૂ કરતા હૈ ઓર દેખાઈ પડતા ભક્તિ લતા જૈસા. उसी बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछा जत असंख्य तार लेखा. ये जो दूसरे लता उसकी भक्ति लता के साथ उसकी उपशाखा के साथ बढ़ रहा है वो क्या है? भुक्ति और मुक्ति के इच्छा. श्रवण कीर्तन कर रहा है, नवदा भक्ति की आधार श्रवण कीर्तन चल रहा है, लेकिन मन में क्या है? संसार को भोगने की इच्छा, भुक्ति मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा. ये दोनों जब तक रहेंगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. संसार को भोगने की इच्छा भुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा. रूप गोस्वामी ने भक्त समय सिंधु कहते कि ये दोनों पिशाची के समान है. कैसे? पिशाची ये डाकने के समान है, ये आगे बढ़ने नहीं देते, खा जाते हैं भक्ति को, नष्ट कर देते. कौन सा? भोगने की इच्छा. इसलिए कहते कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत. ये सब अशांत रहते हैं जो भुक्ति की इच्छा रखते हैं, मुक्ति की इच्छा के रखते हैं शांत और मुख्य सिद्धियां की इच्छा रखते हैं. और ये सब भक्ति व के विरुद्ध है, ये भक्ति नहीं कहा जाता है. इसलिए हम देखते कि हम मंदिर में आ गए हैं, दीक्षा भी ले लिए, माला भी जप रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मन में संसार को भोगने का इच्छा है, भुक्ति है, भोग की इच्छा है. संसार को भोगने का इच्छा है और किसी किसी का भी सोचता है कि इतनी बार में बार बार जन्म उत्सव चक्र में क्या भटकते रहेगा, मुझे मुख्य मिल जाना चाहिए. मुख्य की इच्छा रखकर भी भक्ति की प्रारंभ वो भक्ति कर रहा है, लेकिन इच्छा रखा है कि मुख्य प्राप्त करने की. तो ये दोनों कहते कि ये अनर्थ है, भक्ति जाति अनर्थ पहले और आगे और अनर्थ का आलोचना होगा। ये कहते कि ऐसे ही है, भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर ने कहते थे कि जैसे कोई उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए कहते थे कि प्राचीन काल में जब ऐसे यानवाहन एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई यातायात के लिए कोई कार बस या ट्रेन या प्लेन कुछ नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पानी में नदी के माध्यम से एक जगह से दूसरे नौका से जाते थे। हैं तो ऐसे ही उन्होंने उदाहरण देते थे कोई जैसे आप यहाँ कोई नदी है आपकी नहीं, जैसे आप वहाँ देख सकते वृंदावन से आगरा, वृंदावन से आगरा जमुना, जमुना जाती है आगरा से, आगरा में भी है वृंदावन से। तो एक शादी पार्टी को जाना था कहाँ, वृंदावन से आगरा, आगरा में मैरिज पार्टी, वहाँ मैरिज है सुबह सुबह, तो ठंडी का समय था, यहाँ से रात को 10 बजे लोग निकले, वो ना उसको कहले कि ठीक है सुबह सुबह पहुँचा देना कहाँ आगरा में, तो बोला सही बात है, इसको पूरा थोड़ा लोभ भी दिए लालच दिए पैसा भी ठीक पेमेंट हो गया, तो बोला सो बैठ जाओ नाव, नाव सजा नाव बैठ गया, ठंड के टाइम था वो ऊपर का कवर डाल दिया और बैठ गए, बैठ गए ना वो अपने नाव चलाने प्रारंभ कर दिया अंधार के नाथ, वो रात भी अंधार है नाव चलाने शुरू कर दिया, कौन नाव चलाने वाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त जो थोड़ा सा सुबह सुबह हो रहा था, एक उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति उठ गया, जग गया और उठ के थोड़ा सा ऐसे पर्दा डालकर देख रहा है कि बाहर निकाल कर ये तो वही कैसी घाट है, अरे वही वृंदावन है, सबको जगाया, बोला ये सारा हमारा काम बेकार कर दिया है जो नाव चलाने वाला, पैसा को पैसा ले लिया, हमको बोला था कि सुबह सुबह आगरा पहुंचाएगा, लेकिन हरे कृष्ण क्या हो भाई, हरे कृष्ण। तो आगरा पहुंचाने वाला था लेकिन जहां पर वही है नाव, क्या हुआ सब हो उठ गए हल्ला गुला किए, नाव उसको डांटने लगे नाव चलाने वाला को, नावरिया को, क्या किया तुम, तो सारे काम अब बेकार कर दिया, अभी तो हमको शादी पार्टी वहां पहुंचना था, तुम तो अभी जहां था, बोला बाबू मैं क्या करूं, मैं तो रात भर नाव चलाता हूं, देखिए मैं तो पूरा पसीने पसीने हो गया रात भर, आप लोग तो आराम से अंदर में सोए हुए हो, मैं तो नाव चलाता रहता हूं, क्या कमी था है? और नंगर नहीं उठाया नंगर वो जमीन का पूरा डाला हुआ और ये नाव चलाते रहा है, कैसे जा गया आगे जाने का। तो इसी प्रकार हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भजन का प्रारंभ भक्ति करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये दोनों को हटाए नहीं, किसको, ये भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते ये जो भुक्ति और मुक्ति की इच्छा ये नंगर के समान है, जब हमारा मन में ये दोनों इच्छा हटा नहीं तो हम जितने साधन भजन करने पर भी आगे नहीं बढ़ेंगे भक्ति में है। तो ये दोनों को सबसे हटाना पड़ेगा, सबसे पहले भोगने का इच्छा, धन न कविता सुंदरी, चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहे कि न धनम न जनम न सुंदरी न कविता बा जगदीश काम है, ये चार चीज ये और कई मतलब ये जो भोगने का संसार को जो भोगने की इच्छा, इससे यदि ये यदि मन में पिशाची के समान बैठा हुआ है या मोक्ष प्राप्त करने की विशेष रूप में साधुज्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी मन में बैठा हुआ है, तो जीवन का जो लक्ष्य है भक्ति का लक्ष्य क्या है, भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त करना, ये संभव नहीं होगा। यहाँ तक कि अन्य प्रकार की जो मुक्ति की इच्छा कपिलदेव भगवान कपिलदेव ने कहते कि इसको भक्ति रसामृत के प्रारंभ से ही लोगों को समय कोट करते हैं कि ये जो चार प्रकार की मुक्ति साजुज्य मुक्ति ये तो कैवल्य नरकायत है, इसको तो भक्त को भी चाहते नहीं ब्रह्म में लीन हो जाना, जो अन्य जो चार प्रकार की भी मुक्ति है सारूप्य सामीप्य सालोकास्ती भगवान के लोक जाना वैकुंठ में रहना है वैकुंठ के बाद भगवान के समान स्वरूप प्राप्त कर लेना रूप ऐसे सारूप्य मुक्ति सालोक के उसी धाम में रहना शास्ती भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना सामीप्य भगवान के सन्निकट में रहना इनके धाम में ये चार प्रकार के व्यक्ति वैष्णव मुक्ति माने जाते हैं वैष्णव लोग स्वीकार करते हैं लेकिन कपिलदेव कहते कब स्वीकार करते हैं न दियमानंग न गुन्नंती बिना मत सेवनंग जना वो मैं देने पर भी ये चार प्रकार की मुक्ति मेरे भक्त मेरे पूछते हैं कि हमें आपके धाम में जाने में बा वहां रहने से हमें आपकी सेवा के मौका मिलेगा कि नहीं ये पूछते हैं यदि मेरा सेवा के अधिकार उनको नहीं मिलता है तो मेरे धाम में भी आने के लिए वो तैयार होते हैं वो केवल सिटीजन बन के रहना नहीं चाहते वो मेरे अंतरंग सेवा करना चाहते हैं इसके बाद હરે કૃષ્ણ. તો એટલે ભક્તો ની જે મુખ્ય ઈચ્છા હતા હે સેવા, એટલે ભક્તિ કા અર્થ હી કહા ગયા કે પ્રેમમયી સેવા, પ્રેમ કે સાથ ભગવાન કી સેવા કરના, ઇસી કો હી ભક્તિ કહેતે હૈ. તો એસી જો હમ જબ નહીં સમજતે ઇસકો, અરે એસા હી માલા ભી આપ જપ રહે હૈ, મંદિર ભી આ રહે હૈ, સ્નાન સબ કુછ કર રહે હૈ, લેકિન હમારા મન મેં જે ભૌતિક ઈચ્છા હૈ ભરા હુઆ હૈ, તો ફેર ભક્તિ મેં આગે નહીં બઢ સકતે. એટલે કરીબ 20 સાલ હો ગયા, 25 સાલ હો ગયા, કુછ નહીં હો રહા હૈ. તો કેસે હોગા, તુમ્હારા મન મેં સંસાર ભોગને કી ઈચ્છા ભરા હુઆ હૈ, તો ભક્તિ કરને આતા હૈ કુછ ફાયદા? જૈસે ભૌતિકવાદી લોગ કુછ કાર્ય કર પૂછતે કે ક્યા મિલેગા, ઇસસે ક્યા ફાયદા હૈ? આપ કિસી ભક્ત ભગવદ ગીતા ભી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરને જાતે હો, કિસી વ્યક્તિ કો બોલોગે ગીતા લો, બોલેગા ઇસસે ઇસકો પઢને સે ક્યા ફાયદા? ફાયદા ચાહતે ના? કોઈ ભી કાર્ય કરેંગે ભૌતિકવાદી લોગ ક્યા ચાહતા, ઉસસે કુછ ફાયદા મિલે ઇસકો. હમ ભી જદી એસે ફાયદા સોચેંગે, ભક્તિ ભી કર રહે ઉસસે કુછ ફાયદા મિલે, હમારા મન મેં ભૌતિક ઈચ્છાએ ભરા હુઆ હૈ, તભી હમ આગે નહીં બઢ સકતે. ભોગ કી ઈચ્છા ભી હૈ, પા મુક્તિ કી ભી જો ઈચ્છા રહેતા હૈ, ભગવાન મુક્તિ દેકર પ્રેમ કો દુરા લેતે હૈ, મેં ઇસસે દૂર કર દેતા હમસે. ચલો મુક્તિ ચાહતા ઠીક હૈ, મેરે ધામ મેં આ જાઓ, સિટીઝન બન જાઓ, સાલો કે મુક્તિ લે લો, અપના દૂતો કો ભેજ દીએ, બસ યે બહુત ભજન ક્યા લે આવો ઇસકો, બસ સિટીઝન બન કે રખા દીએ. લેકિન ભગવાન કી ચરણ કમળ મેં પ્રેમ યે નહીં મિલતા હૈ, જિસકી માધ્યમ સે ભગવાન બાંધ જાતે હૈ. કિસકી માધ્યમ સે? પ્રેમ ઇતને આસાન સે સા ભગવાન કિસકો નહીં દેતે હૈ. મેં જો ભગવાન કી ચરણ મેં પ્રેમ સે બ્રજવાસી જન પ્રાપ્ત કીએ, તો ગોપિયા પ્રાપ્ત કીએ, માં જશોદા પ્રાપ્ત કી, તો પ્રેમ કી માધ્યમ સે ભગવાન કો આપણે આયત્ત કરી રખ લેતે હૈ. એક માખન કા પેડ એસે દેખાતે હૈ ભગવાન, કહેતે કન્હૈયા નાચો નાચો માખન મિલેગા, દેખો દેખો માખન હૈ દેંગે. ભગવાન ક્યા માખન કે લિયે નાચતે થે? નહીં, વો લોગ કી પ્રેમ, ઉનકો પ્રસન્ન કરને કે લિયે, ભક્તો કી ઈચ્છા કો પૂર્ણ કરને કે લિયે. તો ઇસી પ્રકાર, ઇસીલિયે યે દોનો અનર્થ રૂપ ગોસ્વામી કહેતે કે યે ભક્તિ કે સાથ સાથ ચલતે હૈ, નામ ભક્તિ મેં શામિલ હો ગયે હૈ, દીક્ષા લે લીએ, માળા જપ રહે હૈ, સબ કુછ કર રહે હૈ, નિયમ સે પાલન કર રહે, લેકિન સાથ મેં એ દોનો કો છોડે નહીં. સંસાર કો ભોગને કી ઈચ્છા અભી તક ભી હમારા મન મેં હૈ, ઓર મુક્તિ કા ઈચ્છા ભી, સોચતે કે નહીં એ શરીર ત્યાગને કે બાદ ઓર નહીં આના મુજે સંસાર મેં, મુજે ચલે જાના, ઓર કભી એ સંસાર મેં કભી પધારૂંગા નહીં. હૈ લેકિન ભક્ત ચાહતે ભગવાન મુજે કહીં કહીં ભી રખે, મેં રહને કે તૈયાર હું, મેરે એકમાત્ર લક્ષ્ય હૈ કે ભગવાન કો પ્રસન્ન કરના, એહી તો ભક્તિ કા વિશેષ, મને બ્રજ ભક્તિ કા હી વિશેષ લક્ષણ હૈ. ગોપિયા લોકને ભગવાને ઇસીલિયે ઇસકો સમજાને કે લિયે દ્વારકા મેં બહાના કિયે કે મેરા શરીર મેં ક્યા હો રહા હૈ, દર્દ હો રહા હૈ, કિસી ભક્ત કે ચરણ મેં લાઓ, ધૂળ લાઓ શરીર મેં, માલિશ કરો, ઠીક હોગા. ઓર બિચારે નારદ જી પરેશાન હો ગયે, સબ ઉદ્ધવ ઓર સૌ જગા ઢૂંઢતે રહે કોઈ દેને કે લિયે, વો સ્વયં ને ભી દેને કે લિયે તૈયાર નહીં થે દોનો, ઓર દૂસરે લોગો કો ભી બહુત લોગો કો માગે, દ્વારકા કી રાણીઓ કી માગે, મુનિ ઋષિ દેવતા સૌ સભી બના કર દે, બોલે અરે તુમ પાગલ હો ગયે, वो त्रिलोकीनाथ भगवान है. ज्ञानी लोग बोले भगवान की थोड़ी कोई, ब्रह्म का थोड़ी सिर दर्द होता है, ये झूठ है. जो लोग भी कर्मी तो मना कर नहीं, सभी लोग कुछ फायदा देखने लगे, भक्त भी. अरे बोले कि चरण का धूल लोगे भगवान के सिर में लगाओगे, हम क्या हमारा फिर कहाँ गए, नर्क में रास्ता में जाएंगे, नर्क चला जाएंगे, कोई नर्क जाने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन ब्रज में आए तो गोपियाँ लोग ने तैयार हो गए तुरंत ही. હે જમુના કિનારે મિલે એનકો પાણી લાને કહે, જમુના ગયે થે, નારદજી મિલે ઉધર, તો નારદજી દેખ બડા પસંદ હો ગયે, સો પ્રણામ કિયે, બોલે કે નારદજી હમારા કન્હૈયા કેસે, આપ તો સબ જગા ઘૂમતે હો, સભી ખબર આપકે પાસ રહેતા હૈ, બોલે તુમ્હારા કન્હૈયા, તુમ્હારા કન્હૈયા કે બહુ જોર સે સિર દર્દ હો રહા હૈ, બિસ્તર સે પડા હુઆ કઈ દિનો સે, ખાન પાન સૌ છોડ ગયા, તો બડે દુખી હો કે રોને લાગે, બોલે ક્યા કરસે, હમારે લિયે હમારા દ્વારા કુછ હો સકતા હૈ, મેં એહી તો મેં ઢૂંઢ રહા હું કે કિસકે ચરણ કા ધૂળ ચાહિયે, वो बीमारी ऐसा ही है, ठीक होगा चरण का धूल लेकर इनके सिर में मालिश करने से. तो बोला हमारा चरण का धूल चलेगा ना, उस जरूर क्यों नहीं चलेगा, बोला ले लो कितना चाहिए. मैं उड़े आश्चर्य होगी, बोले अरे सारा दुनिया में तीनों लोक में घुमाया, कोई देने के लिए तैयार नहीं था. हैं अरे ये ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां इसे देने के लिए तैयार हो गए, तुरंत ही जमुना पानी में पैर डाले, उतर गए जमुना पानी में, किसी लिए धो रहे थे पैर, ભીગા રહે તો પૈર જો ભીગ જાય, ભીગા પૈર મેં જ્યાદા ધૂળ આયેગા, બોલે કતના ધૂળ લેના, લે લો કતની ભી બાર લો ધૂળ ચાહીએ, तो महाराज जी कहे कि अरे तुम लोग पागल है, तुम जानते हो त्रिलोकनाथ है, अशेष कोटि के ब्रह्मांड के मालिक है, तुम चरण का धूल उनके सिर के लिए लोगे, तुम्हारा चरण धूल उनके सिर में लगेगा तो तुम लोग कहाँ जाओगे, नर्क में जाओगे। गोपियाँ कहे कि नाराज जी हमको और उसको सिखाओ मत, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम नर्क जाने के लिए तैयार है, किसके लिए, कृष्ण के लिए, हमारा कृष्ण ठीक रहे, हमारा कन्हैया खुश रहे, हैं सुस्त रहे, हम नर्क जाने के लिए तैयार है। यह है भक्त, भक्ति विशुद्ध भक्ति यही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये ब्रज भक्ति देने के लिए मैं आया हूँ, और कोई मैंने कई कारण है, लेकिन कहते कि युग धर्म हरे कृष्ण मंत्र का भी जो प्रचार है, ये तो कोई अवतार भी और युगावतार आदि भी करके जाते हैं हर युग चक्र में, हैं भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी का एक दिन में तो एक कितने चतुर्युग बीत जाता है, 1000 चतुर्युग बीत जाता है, और स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण हर चतुर्युग में नहीं आते, हर कली में नहीं, अन्य हर द्वापर में नहीं आते हैं, वो सिर्फ आए वैवस्वत मनु के 28वां चतुर्युग की है, मैंने 14 मनु में से 7वां मनु वैवस्वत मनु, उनके शासन काल में जो 28 चतुर्युग से 27 चतुर्युग बीत जाता है, 28वां चतुर्युग में जो द्वापर आता है उसी में केवल भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और अन्य अन्य चतुर्युग में तो केवल युगावतार आते हैं और युग धर्म प्रचार करके हरिनाम संकीर्तन चले जाते हैं। सॉरी गौरांग महाप्रभु कृष्ण की बात में, जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं उसके ठीक नेक्स्ट द्वापर में, सॉरी नेक्स्ट कड़ी के प्रारंभ में कौन आते हैं, गौरांग महाप्रभु। जैसे पिछले द्वापर में स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण पधारे थे, तो इसलिए इस कड़ी के प्रारंभ से कौन पधारे, गौरांग महाप्रभु पधारे हैं। ये महा इसलिए महाप्रभु ने कहते कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश है, ये युग धर्म हरे कृष्ण मंत्र का प्रवर्तन तो जो अंश होते बा किसी अवतार की तरह युग अवतार आकर प्रवर्तन कर चले जाते हैं, लेकिन मैं क्यों आए गोलोक से, आमा बिना ब्रज प्रेम केहू नारे जीते, मेरा इला संसार में ब्रजवासियों को प्रेम कोई प्रदान नहीं कर सकता, दूसरों को ब्रज प्रेम ब्रज ने ब्रज का भक्ति रागानु का भक्ति कोई नहीं दे सकता, इसलिए ब्रज प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं मुझे स्वयं आने पड़ा, अच्छा गोपियों की महिमा को बताने के लिए, यदि यदि गौर ना हई तो तबे की हई तो केमन धरी केमने धरिताम देह राधार महिमा प्रेम राशि समा सीमा जगते जानात के नरोत्तम दास ठाकुर साहब। ये यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते मैं शरीर कैसे धारण करता हूँ, क्योंकि संसार में दूसरे कोई व्यक्ति नहीं है जो कि राधा की महिमा को ये संसार में प्रचार कर या ब्रजभक्ति को प्रचार करने वाला बताने वाला है। तो इसलिए ये भक्ति ऐसी है कि नर्क में जाकर भी भगवान को सुखी रखना, भगवान को सुखी रखने के लिए कुछ भी करने के लिए, प्रभुपाद ने गया कहाँ, न्यूयॉर्क शहर में वृंदावन के बाद ब्रजवास को छोड़कर वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठकर जप करते थे, लेकिन गुरु कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वहां से गए, वृंदावन से पानी की जहाज में बैठकर कार्गो शिप में वृंदावन न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे, वो नर्क ही है। तो इसी को सिखाने के लिए ही गौरांग महाप्रभु आए थे, पूर्ववर्ती आचार्य तो धर्म अर्थ काम मुख्य केवल सिखाए थे, लेकिन महाप्रभु ने आगे के प्रकृति में ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है क्या, जन्मनी जन्मनी स्वरे भवता भक्तिर भगवान के चरण कमल में केवल अहेतु की प्रेम व भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ये दोनों चीज जब तक हमारे मन में हटेंगे नहीं हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, कौन सा भक्ति, भक्ति के माध्यम से कुछ प्राप्त करने का फायदा मिलेगा कुछ है? और मुक्ति की भी इच्छा, भक्त कुछ रिजर्वेशन नहीं रखता है, भगवान जैसे रखेंगे ऐसे रहूंगा ये भावना है, केवल भजन करना मेरे लक्ष्य है, लेकिन मेरे क्या गति होगा वो दायित्व उनका ऊपर, किसके ऊपर, यहाँ तक भोजन के लिए भी चिंता नहीं करता भक्त, माधवेंद्र पुरी भोजन के लिए चिंता करते थे नहीं, तो गोपाल का चिंता था, उनको क्या चिंता, उनकी काम भजन करना और भोजन करना, भोजन जोगाना, बार उनकी कुछ जो कुछ आवश्यकता भगवान पूर्ण करते हैं, भगवान गीता में कहे हैं अनन्य चिंतित मांग जे जना कोई पास तेसांग नित्य अभियुक्तान जोग क्षेम वहन, भगवान जोग क्षेम वहन करेंगे, भक्त क्यों उसके बारे में बुझेगा, उसकी काम है कि अनन्य चित्त से शरणागत होकर उनकी भजन करना था, तो उनकी सेवा में लगा रहना। इसलिए सबसे पहले जो भक्ति जात अनर्थ यह है कि भक्ति और मुक्ति की इच्छा, भक्त के साथ साथ ये इच्छा न हो है? किसी प्रकार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा या मोक्ष की इच्छा भक्त ये भी नहीं चाहते हैं है? भक्त यहाँ तो भी नहीं चाहते कि भक्ति ठाकुर कहते कि चाहे मेरे कीड़े के रूप में भक्त के घर में जन्म मिले लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा बनने की मेरी इच्छा नहीं है, है? पशु पक्षी हो थके स्वर्ग वा नहीं रह तब भक्ति रहु भक्ति बिना हृदय है। जो पशु पक्षी होकर भी पक्षी यदि बन जाऊ जटायु की तरफ काकभुसुंड की तरफ गरुड़ की तरफ क्या नुकसान है, है? पक्षी है लोग, पक्षी ध्वनि में भी भगवान के महान भक्त है। हनुमान जी जाम्बवान जी जो पशु की ध्वनि में रहकर भी भगवान की महान भक्ति की है, तो ऐसे ही जन्म मिलने से मानुष्य जन्म से वो है के भी रहूं हे प्रभु आपकी भक्ति से जिससे विचित्र न हो जाऊं, ये भक्तों की प्रार्थना है। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव साम, कृष्ण भक्त के मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वो केवल भक्ति ही करता है, एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना। तो इसलिए सबसे बड़ा सबसे जो फास्ट अनर्थ है भक्ति के साथ साथ चलता है तो है भुक्ति और मुक्ति की इच्छा। इसके बाद जो अर्थ फिर आगे चैतन्य बाबू कहते कि निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण। निषिद्धाचार जिस प्रकार आचरण करना शास्त्र में मना है, कुछ आचरण ऐसा ही है जिसको करने के लिए शास्त्र में मना किया गया, ऐसे आचरण यदि हम भक्ति करने के साथ साथ ऐसे आचरण निषिद्ध आचरण करते हैं तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये भक्ति के साथ साथ निषिद्धाचार किसको पहले एक प्रकार के तो पाप का जो आलोचना हुआ था तो वो आलोचना हो गया था निषिद्धाचार बिहेवियर नॉट टू बी एग्जिबिटेड बाय ए पर्सन डिजायरिंग टू बिकम परफेक्ट। जो प्रकृत में भक्ति में आगे बढ़ना चाहता जीवन के सिद्धि को प्राप्त करना चाहता तो उसके लिए कुछ नियम जैसे ये सब आलोचना पहले हो गया था दुष्कृति जात अनर्थ से, लेकिन फिर भी ये सब निषिद्धाचार में आते हैं, ये निषेध किया गया शास्त्र में नहीं करना है। इलिसिट सेक्स इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग मिटेटिंग कुटीनाटी, कुटीनाटी किसको कहते हैं डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, बातचीत करना स्ट्रेट नहीं, कुछ अंदर में कुछ कूटनीति रखकर ऐसे बात टेढ़े बात करना है। कहते ना अरे कृष्ण चढ़े तो भक्त भी टेढ़े होना चाहिए, भक्तों को टेढ़ा नहीं होना चाहिए, भक्त वाले सरल होते हैं सिंपल हार्ट है। इसलिए आचार्य लोग कहते कि जो सिंप्लिसिटी इज वैष्णव मीजिंग, सरलता ही वैष्णवता, वैष्णव का हृदय बड़ा सरल होता है सिंपल होता है, यहाँ पर कुछ दूसरे कपटता किसके यहाँ पर स्थान नहीं रहता। इसलिए डिप्लोमेटिक बिहेवियर कुटीनाटी जब कोई करता है तो वो आत्मा को प्रसन्न नहीं करता है और भगवान भी इसे प्रसन्न नहीं होते। कैन नॉट सेटिस्फाई दी आत्मा विश्व, इट कैन नॉट इवन सेटिस्फाई दी बॉडी माइंड। जो कॉर्पोरेट माइंड है सब समय कुछ गलती करने का माइंड है, बस कुटीनाटी करके दूसरों को गाड़ी में डालना चाहता है, ऐसे भाव सब समय भावना में रहता है दूसरों को, पर सुखे यानी पर दुखे सुखी, इसे कहते पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, भाई पर दुखे सुखी पर सुखे दुखी। तो इस प्रकार की भावना जो मन में है डिप्लोमेटिक बिहेवियर तभी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, चाहे हरे कृष्ण करते रहें ऐसे ही, लेकिन मन में जब कपटता है कलुषता है दूसरे के प्रति को भक्तों के प्रति कुटनीति करने की भावना है, अरे वो क्या है इसको इतना प्रशंसा क्यों मिलता है, ये बड़ा देखा रहा बहुत भक्त बड़ा भक्त है मंगलारती डेली आते कोई किसको प्रशंसा करते हैं, बोला अच्छे भक्त है देखो एक दिन भी मंगलारती एब्सेंट नहीं रहता है, भारत कक्षाएं बैठता है, बड़े सिंपल है, सभी सेवा ठीक करता है, कोई यदि किसकी प्रशंसा करता है तो उसको सहन नहीं होता, तो वो कहता कि अरे कुछ कूटनीति करता है उसको बदनाम करने के लिए है, कुछ उसके पीछे लगता है। तो इस प्रकार जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर हम किसी को रखेंगे किसी को आगे बढ़ने के लिए भौतिक इच्छा है, इसे किस लिए होता है डिप्लोमेटिक बिहेवियर, भौतिक इच्छा रहता है वो सोचता कि मैं टेम्पल बना, उसको टेम्पल बना दिया, अरे मेरे बाप नया अभी आया अभी अभी आया नया भक्त है, अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ मंदिर में टेम्पल काउंटर बन गया, मैं 10 साल से मंदिर में हूँ, बस कुछ ना कुछ कुटनीत करके उसको बदनाम कैसे करेगा उसके पीछे लग गए डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। और इसलिए कहते कि हमारा जो व्यवहार है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधे से सरल, सरलता सरल होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसे डिप्लोमेटिक व्यवहार नहीं, कुछ घुमा फेरा के इसको बोलना ये नहीं होना चाहिए, इससे भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। वेद ने इसको अनुमोदन नहीं किया कि वैदिक अथॉरिटी कहते कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैष्णव जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं। इफ वी ट्रीट द पीपल डिप्लोमेटिकली और डुप्लीसियसली आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। प्रभुपाद लगते हैं प्रभुपाद जी के पापड़ से दी गई है प्रभुपाद पापड़, यदि हम ऐसे ही व्यक्ति के साथ में डायरेक्ट डीलिंग नहीं करेंगे, कुछ घुमा फिरा हमेशा डिप्लोमेटिक व्यवहार कूटनीति रखेंगे कुछ मन में, एक कूटनीति करता व्यक्ति जो भौतिक इच्छाएं रहता है मन में, तो इसलिए डिप्लोमेटिक बिहेवियर भगवान को प्रसन्न, स्वयं का भी आत्मा को प्रसन्न नहीं करता है ना भगवान को भी प्रसन्न करता है। डिप्लो ऐसे कूटनीति करने वाला कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए निषिद्धाचारक कूटीनाटी जीवहिंसन, जीवहिंसन अर्थात अन्य पशुओं को मारना। भक्ति जब करते हैं तो भक्ति जब हम कर रहे तो ऐसा ही सेवा, ऐसा ही कर्म भी हमको करना चाहिए जिसके माध्यम से कोई जीवों की हत्या न किया हो, मनुष्य के छोड़ो अन्य भी जीव जंतु सभी को, सभी के हृदय में परमात्मा को दर्शन करते हुए वैष्णव कभी जीवों को वध नहीं करता है, जीव हिंसा नहीं करना। जीव हिंसा अर्थ प्रभुपाद कहते हैं किलिंग एनिमल्स अब अन्य जीवों के प्रति हिंसा भावना रखना वो भी जीव हिंसा है। किलिंग पोर एनिमल्स और अनडाउटेडली ड्यू टू एनवी ऑफ दिस एनिमल्स, द ह्यूमन फॉर्म इज मीन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा, कृष्ण को समझने के लिए मनुष्य जीवन है। ब्रह्म जिज्ञासा करना अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये एक प्रकार की जीवहिंसा, जब आप पशुओं को काट के खाते हैं और जैसे मांसा आदमी से लोक रूप पंक्ष काट के खाते हैं वो जीवहिंसन करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पास में शास्त्र नॉलेज है और हम प्रसार नहीं करना चाहते हैं, ये भी आचार्य लोग कहते कि इनडायरेक्टली ये भी जीवहिंसन है। आपकी जो आपके पास में नॉलेज है, शास्त्र की ज्ञान है, आप गीता पढ़ते हो भागवत पढ़ते हो, आप जो जानते हो और ये भी जानते हैं कि प्रसार करना चाहिए वैष्णव को, क्या करना प्रसार करना चाहिए। भगवान कहे कि जो मेरी वाणी को प्रचार करता है वो सबसे मुझे प्रिय है, इस बात को पता है। गुरु भी चाहता कि आप प्रचार करें, प्रभुपाद जी भी चाहते कि उनकी किताब के डिस्ट्रीब्यूशन हो, महाप्रभु भी कहे कि प्रचार करो, जा रहे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, ये जानते हो आपके पास में ज्ञान भी है बहुत पढ़े शास्त्र, लेकिन प्रचार नहीं करना चाहते, दूसरे को बताना नहीं चाहता, सोचता क्या क्या बताऊंगा, बताऊंगा तो मैं जो जानता हूँ वो भी जान लेगा, तो मेरा फायदा क्या, मेरा इंपोर्टेंस क्या रहेगा, है तो बताना नहीं चाहता दूसरे को, ये दूसरों को नॉलेज न देना, प्रचार न करना, आपके पास क्षमता होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी यदि प्रचार नहीं करते ये भी क्या हिंसा है। यदि प्रचार नहीं करता व्यक्ति वो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ेगा, भगवान को खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रचार ही सार, प्रचार ही सार, टीचिंग इज द एसेंस। जब प्रचार नहीं करता तो भक्ति में नहीं, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति भी भक्ति में आगे बढ़ना कठिन होता है। लाभ, लाभ किसको कहते हैं, प्रकृत लाभ क्या लाभ, प्रकृत लाभ है आध्यात्मिक लाभ करना, बस भगवान को भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, ये असली लाभ है। लेकिन अज्ञान के कारण हम क्या सोचते असली लाभ क्या है, इंद्रिय तृप्ति की साधना को प्राप्त करना यही लाभ है, कोई मैं मंदिर में ज्वाइन कर किया था और मैं टेम्पल कमांडर बन गया और आस्ते आस्ते फिर प्लान चलते रहेगा कैसे कुछ करूंगा, कैसे आप अगला पोस्ट मिलेगा, कौन सा मैनेजर कैसे बनूंगा, फिर आगे कैसे वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, तो ये प्लान चलते रहेगा, वो उसका प्लान करके वो पोस्ट कैसे हासिल करते रहेगा, वो सोचते कि यही लाभ है असली लाभ है, तो भक्ति में भक्ति का अर्थ ऐसे ही लाभ उठाने के लिए नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या, भगवान के चरण में प्रेम को बढ़ाना, प्रेम की भावना को। ये जरूरी नहीं कि कोई टेम्पल कमांडर बन गया बा आस्ते आस्ते टेम्पल प्रेसिडेंट भी बन गया बा जीबीसी भी बन गया तो वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। और कोई व्यक्ति जब स्वीपिंग कर रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है और प्रेम से वही सेवा कर रहा है, इसके डिस्टर्ब नहीं, माइंड डिस्टर्ब नहीं, वही सेवा कर रहा है, अब लेकिन हो सकता है कि वही झाड़ू लगाने वाला भगवत धाम जाएगा और ये जो ये फिर वो स्वर्ग में रह जाएगा। ये प्रभुपाद जी को पूछा गया मायापुर में, एक भक्त ने पूछा, वरिष्ठ भक्त, प्रभुपाद जी आप जितने भी शिष्य बनाए सबों की सभी भक्ति भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद जी ने कहे कि नहीं, जो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 80% इस्कन की भक्त स्वर्ग में चले रह जाएंगे, सकाम भक्त। इसलिए मन में भौतिक इच्छाएं भरा हुआ है, वो सकाम भक्त है। कौन? देवता लोग। भगवान की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, लेकिन मन में भौतिक इच्छाएं हैं। जब तक भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होगा, और भगवद्धाम नहीं जा सकते, मार्च नहीं कर सकते, उधर मार्चिंग करके नहीं जा सकते। भौतिक इच्छा के साथ कोई भगवद्धाम नहीं जाता है। इसलिए जो भौतिक इच्छा के साथ हम जो भक्ति करते तो उसके माध्यम से स्वर्ग प्राप्त होता है। देवताओं की लोग कुछ पोजिशन, पावर, लाभ, प्रतिष्ठा, कुछ भोग की इच्छा, ये सब जब तक रहता है। तो ये जरूरी नहीं कि कोई ऐसे तथाकथित लोग देखवा पोजिशन आगे बढ़ रहा तो भक्ति में आगे बढ़ रहा, ऐसे नहीं। श्यामानंद प्रभु तो केवल झाड़ू लगाते रहे, कहा सेवा कुंज में 12 साल झाड़ू लगाए, उसी में राधारानी प्रसन्न हो गई। हमारा जो भक्त जैन कर मंदिर में, इसको बोलो कि 12 साल झाड़ू लगा, तुम्हारा यही सेवा है, 12 साल के लिए झाड़ू लगाना पड़ेगा, रहेगा मंदिर में वो, तो उस दिन पड़ेगा। बोला क्या, 12 साल झाड़ू लगाना पड़ेगा, भाग जाएगा। 12 साल के एक साल नया भक्त ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो बोलेगा अरे नया भक्त ट्रेनिंग खत्म हो गया, अभी झाड़ू नहीं लगाना मुझे, दूसरा सेवा दो। अच्छा, तो प्रकृति में भक्ति क्या नहीं समझा है? भक्ति क्या चीज है? प्रेममयी सेवा। सेवा में छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता है। भगवान ये नहीं देखते कि कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मैनेजर है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या वो देखते कि भाव क्या है इसका, अंतकरण के भाव क्या है, अंदर में जो झाड़ू जो सेवा कर रहा है अंदर में क्या सोच रहा है। 3 व्यक्ति झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में, लेकिन एक सोच रहा है कि आज आया तो झाड़ू लगा दिया कमांडर, सोचे अरे क्या सारे घूम रहे, मुझे ही लगा दिया झाड़ू लगाना, और गाली देता है इसको, किसको? कमांडर को मन से मन से गाली दिलाओ, अग्निच्छा सबसे झाड़ू लगाता है। तुम जानते कि नहीं लगाऊंगा तो मंदिर से बोले जाओ तुम, पर यहाँ नहीं रहने के लायक नहीं, बग गया, लगा देगा, खाली भय से झाड़ू लगाता है, तो उसको सेवा नहीं है, वो प्रकृति में भगवान स्वीकार नहीं करता। दूसरा है, 5-4 साल रह गया, ड्यूटी समझ कर कर लेता, चलो ड्यूटी है, ऐसा करना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा होता है कि जो प्रेम से वही काम करता है, बड़े प्रेम से बोलते कि अरे देखो कितनी मंदिर है गंदा पड़ा, भगवान की सेवा मुझे मिला है, भगवान की सेवा की मौका मिला, बड़ा प्रेम से हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए झाड़ू लगाता है, उसको कुछ किसी को गाली दे रहा है, ये करना नहीं, बड़ा प्रेम से है। तो इसलिए वृंदावन में एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछे थे, उनके सेक्रेटरी तमाल कृष्ण महाराज बोले कि प्रभुपाद आप वृंदावन में इतने सारे भक्त रह रहे हैं, इनमें से सुभक्त कौन कैसे पता लगाएंगे भक्ति कौन मैंने शुद्ध भक्ति कर रहा। प्रभुपाद जी ने कहे कि तुम अभी लिस्ट बना लिख लो, नाम सो जितने भक्त हैं सबका नाम लिख लो, कौन सा भक्त किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये सब लिख के सेवा कर रहा, लिखकर चले जाओ, 12 साल के बाद फिर वापस आओ, 12 साल के बाद वापस आओ और चेकिंग चेकअप करो, लिस्ट कौन सा भक्त अभी तक प्रतिष्ठा हुआ है और उसी डिपार्टमेंट में उसी सेवा कर रहा है, समझ लेने उसकी मति पूरा स्थिर है और वो शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसके मन में पूजा मान प्रतिष्ठा ये सब है नहीं, ये स्वर और विष्ठा है। पूजावान प्रतिष्ठा की इच्छा वैष्णव के लिए है, स्वर का विष्ठा के समान है, ये त्याग नहीं त्यागे तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए भौतिक लाभ है, पीपुल डू नॉट नो दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। हमको पता है सबको, ये जो अज्ञानी लोग है जो जानते नहीं कि शरीर को छोड़ने के बाद और एक शरीर मिलने वाला है, डेथ के बाद दूसरे शरीर भी मिलने वाला है, इसीलिए उन्हें भौतिक लाभ के पीछे पड़ा रहते हैं, कुछ को संग्रह करने कुछ है करते, लेकिन मृत्यु के समय में कोई साथ में नहीं जाएगा, पोस्ट जाएगा, कुर्सी में बैठा था बोला कि मैं ये कुर्सी जाने वाला नहीं साथ में है, ये जहाँ जो जो कुछ पोस्ट है मान मर्यादा जो कुछ भी संग कुछ रखा था ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए इसको जानते हुए भौतिक लाभ के पीछे नहीं चिंतन नहीं करना चाहिए है? भौतिक लाभ हानि इसकी वो जानना चाहिए कि असली लाभ है, जो असली हमारा कर्तव्य है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना। इसलिए लाभ हो पूजा है, यदि कोई पोस्ट में बैठा है, हम देखे हैं कई लोग प्रेसिडेंट बनकर बैठा है, हैं तो यदि वो व्यक्ति गया उसके पास मिलने के लिए तो उसको माला लेके जाना, नहीं तो क्या महाप्रसाद लेके जाना चाहिए, माला डालेगा उसके गले में, महाप्रसाद के टेबल में रखेगा और प्रणाम करेगा तभी वो कार्य आपको करेगा है। तो बोला सही बात, ये भक्त अच्छा है। अब गया आप यदि प्रणाम भी नहीं किया, अगर हरे कृष्ण आप बात हाथ जोड़ी खड़ा हो गया, बोलेगा अरे क्या ये इसको व्यवहार भी नहीं आता है, बेस्ट में टिकट भी है, प्रणाम नहीं किया मुझे, मैं प्रेसिडेंट हूँ,
हैं?
तो पूजा की इच्छा, ये पूजा की इच्छा रहता है जो आस्ते आस्ते तो बढ़ते आगे बढ़ते तो बोलते कि अरे मैं सीनियर बन गया, मैं सीनियर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, बा मैं वो टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये जीवन की क्या ये भक्त ज्यादा गया मेरे को देखा है मैंने, मेरे को प्रणाम भी नहीं किया, उसको फर्क पड़ते घूम गया, अच्छा ये कौन है क्या नाम है, दूसरे को पूछेगा ये भक्त गया क्या नाम है, दूसरा भक्त आया उसको प्रणाम किया तो उसको बोला कि उठना, और ये जो चला गया भक्त क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है, तो फिर कैसे उसका बदला लेगा कुछ, उसको प्रणाम बनाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा, ये प्रणाम नहीं करता है सीनियर को, हैं? ये पूजा की इच्छा रहता है जब तक ऐसे ही मान प्रतिष्ठा, ये पूजा की इच्छा क्या है शरीर के साथ, किसको प्रणाम कर रहे हो, ये शरीर को, वो शरीर में है तो उसके पास बड़ा अहंकार रहता कि हैं मुझे पूजा करना चाहिए लोग, हैं मैं आचार्य बनना चाहिए, मुझे सर कोई परंपरा से आया हुआ अन्य भक्त लोग ने इसको उन्होंने विनय करके हाथ जोड़ के आचार्य बना रहे, तो वो आचार्य बनने के लिए कोई नहीं चाहता, भक्त नहीं चाहते कि मैं आचार्य बन जाऊँ, हैं मेरे दीक्षा दिया दीक्षा देने की क्षम रहे अधिकार रहे, मैं गुरु बन जाऊँ, हैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूँ, मैं सब समय आपका शिष्य बन के रहना चाहता हूँ, हैं आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी नाहब आमी प्रतिष्ठा सा आसी हृदय दुसीबे होइब नीरवे गामी, कहते कि ये प्रभु यदि मेरे मन में कभी भी भावना ना आ जाए कि मैं वैष्णव बन गया हूँ, मैं महान बन गया हूँ, आपकी महान भक्त बन गया, वैष्णव बन गया हूँ, जब ये भावना आ जाए कि मैं अभी वैष्णव बन गया, मैं वैष्णव मैंने परमहंस वैष्णव बन गया, महान किसी व्यक्ति बन गया है, फिर मेरे मन में क्या आएगा, प्रतिष्ठा की आशा आएगा, आमी तो वैष्णव या बुद्धि होइले अमानी ना हो वो आमी, फिर अमानी नहीं रहूंगा, सम्मान की आशा बढ़ जाएगा, मैं इतना बड़ा वैष्णव हूँ सब लोग मुझे सम्मान करना चाहिए, जो भी देखता है सब लोग मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं इतने महान हूँ, हैं आचार्य के पद पर हूँ, बा मैंने सन्यासी हूँ, बा कुछ टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मेरे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे लोग, हैं अमानी ना हो आमी प्रतिष्ठा सा आसी हृदय दुसीबे वही वो नहीं रहेगा, जब प्रतिष्ठा की इच्छा मन में आ जाएगा फिर व्यक्ति नर्कगामी हो जाता है, वहीं से उसके फलडाउन शुरू हो जाता है, हैं निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ठा दीदाने होवे अभिमान भार ताई तब शिष्य थकिया सर्वदा न लई वो पूजा का, हैं भक्ति ठाकुर कहते कि तब फिर मैं सोचूंगा मैं महान हो गया, वही वैष्णव बन गया, गुरु बन गया, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये जितने वैष्णव बैठे हैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए शास्त्र में कहा कि जो वैष्णव की झूठन खाने से सब वो भी सब वैष्णव बन जाएंगे, इसलिए मैं खाने के बाद मेरे प्लेट में जो कुछ है सबको डिस्ट्रीब्यूट लाओ लो, तुम भी मेरे जैसे वैष्णव बन जाओगे, तुम्हारा मन कलुषित मन से सुधर जाएगा, हैं उच्चिष्ठा दिदाने होवे अभिमान भार, ये अभिमान जब आ जाएगा फिर मैं नर्कगामी हो जाऊंगा, भक्ति ठाकुर कह रहे परमहंस वैष्णव, यदि मैं वैष्णव अपने को सोचूंगा मैं परमहंस बन गया उच्च स्थान में आ गया फिर उच्चिष्ठा दिदाने होवे अभिमान भार, इसलिए प्रभु मुझे ऐसा ही पोस्ट कुछ ऊंचा ये पोस्ट में बैठना मैं नहीं चाहता हूँ, सब ने थाई तब शिष्य था किया सर्वदा, मैं हमेशा जैसे मेरे गुरु के शिष्य बन के रहूं, इसी रूप में मेरे परिचय रहे कि मैं मेरे गुरु के सदगुरु के एक अत्यंत नगण्य शिष्य हूँ, उनकी उपयुक्त शिष्य बन पाऊँ, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए, मेरे गुरु की जैसे ऊपर आदेश को मैं ठीक ठीक से जीवन में उतार सकूँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहे कि प्रकृति में गुरु वही बन सकता है जो अपने गुरु को फॉलो करता है, यदि आपने गुरु को फॉलो नहीं करता है वो गुरु बनने का अधिकार नहीं है, तो प्रभुपाद ने एक बात पूछा, वो सब शिष्यों को पूछे कि तुम लोग बीच में जितने बैठे हो बोलो सदगुरु के पास सदगुरु बनने के लिए किसके पास में योग्यता क्या होना चाहिए, तो सब लोग कई प्रकार की बोला बात होवेगो मानस क्रोध होवेगो रूप गोस्वामी को उपदेश का पहला श्लोक, कोई कहा कि गुरु बनने के लिए सब शास्त्र की ज्ञानता होना चाहिए, उत्तम वैष्णव होना चाहिए, उत्तम अधिकारी होना चाहिए, बहुत कुछ लोग अपने अपने बोलते रहे, प्रभुपाद में सेटिस्फाइड नहीं हुए, बोलते बोलते लास्ट में प्रभुपाद ने कहे कि ये सारे गुण होते हुए भी यदि वो गुरु की मार्गानुसरण नहीं करता, अपने सदगुरु को फॉलो नहीं करता है, सदगुरु के आदेश को पालन नहीं करता है, वो गुरु नहीं बन सकता है, यदि इमीडिएट प्रीडिसेसर जो कि सदगुरु है सदगुरु आदेश को पालन नहीं करता है, तो वो सारे गुण होते हुए भी तथाकथित शास्त्र के आधार पर सारे गुण गोस्वामी का गुण जैसे सब दिखाई पड़ने पर भी वो आचार्य बनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक ही गुण सबको काट दिया था, क्या है अपने गुरु का आदेश को फॉलो नहीं कर रहा, तीसरे अपराध कर रहा नाम अपराध, गुरु को साधारण समझ रहा अवज्ञा करना आदेश को, तो कैसे गुरु बन सकते, तो इसलिए पूजा ये लाभ पूजा ये सब चाहते एडोरेशन बाय मिलियन पीपल वैल्यूलेस बिकॉज ये भी सब डेथ के साथ सब चला जाए। माँ लाभ पूजा और प्रतिष्ठा ये केवल शरीर जब तक आपको ये सब मिलेगा, शरीर का साथ ये सब चले जाते हैं, मृत्यु के बाद ये सब कोई नहीं पूछेगा आपको फिर, सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट मैन इन मेटेरियल कैलकुलेशन प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा लागे साक्ष्य आचरण, जैसे ये भजन में आज गा रहे तो भक्ति ठाकुर कहते थे प्रतिष्ठा लागे साक्ष्य आचरण, मेटेरियल एडोरेशन एंड टाइटल्स डेकोरेशन दैट कैन नॉट बी कैरिड अवर, ये भी नहीं जा सकता मृत्यु के साथ, ये समाप्त हो जाए बड़े रूपा जी के तात्पर्य से लिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट। इसलिए पूजा मान और प्रतिष्ठा ये शरीर के साथ ही केवल रहता है जुड़ा हुआ है, और इसके पीछे जब हम इसको त्याग नहीं पाएंगे भक्ति करने के साथ साथ ये तीनों के पीछे भटकते रहेंगे, हम तो हम कैसे पूजा लेगा, सब लोग कैसे हमको प्रणाम करते रहेंगे, हमारा ख्याति कैसे बढ़ेगा, हम महान प्रचारक के रूप में बहुत कुछ मने में कैसे हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा है, हम कैसे ये भी सूक्ष्म रूप में रहता, मैं कैसे गुरु बनूंगा, मैं कैसे आचार्य बनूंगा, कब मेरा शिष्य रहेंगे, मुझे आए जहां चलूंगा मेरे साथ क्या 100-200 चलेंगे साथ में है, इसे महाप्रभु इसलिए कहेगी नौ जन जनकार्थ फॉलोअर, ये सब जो इच्छा रहता है पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा ये भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए कहते निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन, जीव को हिंसा करना, पापाचार न करना और पूजा मान प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा ये छोड़ना बड़ा कठिन होता है लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़े ये भक्ति में आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे है। प्रभुपाद जी थे दयानंद प्रभु जिनको रथ यात्रा के पिताजी कहते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में कहीं भी रथ यात्रा था प्रभुपाद जी का आदेश है जब रथ यात्रा की चलता है तो उसमें उनकी फोटो रखना, किनकी जयानंद प्रभु की फोटो रखना, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला रथ यात्रा पाश्चात्य जगत में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने प्रारंभ किया था प्रभुपाद जी के आदेश में, दिन रात उसको पता ही नहीं था जगन्नाथ, प्रभुपाद जी केवल बता दिए ऐसे ही जगन्नाथ का रथ होता है और वो आइडिया लगा कि जगन्नाथ की रथ बनाकर सबसे पहला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को शहर में 1967 में प्रारंभ कर दिया। और केवल इसके लिए नहीं उनके गुण ऐसा ही था, वो रथ यात्रा के नहीं सर एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे सैन फ्रांसिस्को मंदिर के प्रेसिडेंट टेम्पल प्रेसिडेंट थे लेकिन वो साधारण भक्ति की तरफ रहते थे, इनको देखेगा तो कोई नहीं सोचेगा कि टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई नया भक्त का भी सेवा करते थे, कोई भी भक्त लोग जब स्टेशन चले जाते थे तो जाते थे कपड़ा जैसे उनके रूम में देखते थे कपड़ा धोया नहीं बेचारा छोड़ के चला गया नहीं, वो स्वयं धो देते थे कपड़ा, स्वयं धो के सुखा के फिर इसको फोल्डिंग करके उस स्थान पर रख देते थे। रात्रि में भक्त लोग सो गए और कोई मच्छर टायर्ड होकर आया किसी सोए के सो गया उसको मच्छरदानी टांगने की भूल गया, वो फिर चेकिंग करते फिर जो मच्छरदानी टांगा नहीं तो उसकी मच्छरदानी टांग देते हैं, कहीं खचड़ा पड़ा तो अभिमान नहीं कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, खचड़ा स्वयं अपने हाथ से उठाकर लेकर फेंकते थे, किसी गाड़ी का सभी वो बड़े मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए कोई गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है तो स्वयं रिपेयरिंग कर देते थे, टेम्पल प्रेसिडेंट है लेकिन सभी प्रकार के काम करने में धुरंधर थे, अभिमान नहीं था कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, वो अपने केवल भक्तों के सेवक समझते थे, रथ भी स्वयं कारपेंटर काम कर पूरा रथ को बनाते थे हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़े प्रसन्न थे, बताते बहुत धनाढ्य परिवार के लड़का थे हैं अमेरिका के बड़े धन, तो उनके पिताजी माताजी एक बार $5,000 उस समय बहुत होता है उनको दे के गए उनके माताजी $5,000 की कुछ सेवा मने और क्या, लेकिन वो तुरंत ही $5,000 लेकर के उनको दे दिए प्रभुपाद जी को, नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद लगते तो सोचते थे कि कहाँ से पैसा मिलेगा इसका प्रिंटिंग के लिए, तुरंत दे दिए प्रभुपाद, ये मेरे माता जी ने दिया था $5,000 आप रखिए, ऐसे समर्पित भक्त थे। इसलिए प्रभुपाद ने कहे कि अन्य आचार्यों की तरफ वो प्रभुपाद जी के सामने ही उनके देहांत हो गया शरीर त्यागे, और उन्होंने प्रभुपाद ने कहे कि उनकी जो तिरुभाव हुआ तो प्रभुपाद ने कहे कि जैसे हमारे वैष्णव अन्य आचार्यों की तिरुभाव आविर्भाव मनाते हो इसी प्रकार इनकी तिरुभाव आविर्भाव स्तन में मनाना, ये विशुद्ध शुद्ध भक्त है निश्चित रूप में गोलोक वृंदावन में गया है। तो इसलिए भक्ति का अर्थ नहीं केवल ऐसे ही लेकिन गुरु जिसको रिकग्नाइज करता है दूसरे के द्वारा रिकग्नाइज नहीं होने का समाज में रिकग्नाइज होने के लिए कृत्रिम रूप में उपाय मत करो, आप ऐसे ही भक्ति करो भक्ति ठाकुर कहते कि इसलिए आप ऐसे ही भक्ति करो, आपको देखने के लिए भगवान आएंगे, आप देखें प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयास मत करो, ऐसे कृत्रिम रूप में है। तो इस प्रकार ये सब इसलिए अनर्थ है। भक्ति के साथ साथ हम इसको जब देखते हैं सोचते हैं, मंदिर में आया हूँ जब मैंने भक्त बन गया हूँ तो कैसे टेम्पल कमांडर बनूंगा, कैसे प्रेसिडेंट बनूंगा, कैसे जीवीसी बनूंगा, कैसे गुरु बनूंगा, ये सब जब सूक्ष्म रूप में इच्छाएं रहेगा तब तो असली जो हमारा लक्ष्य है कि कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना, ये नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलने वाला, पर ये सब मिल जाएगा। दिखाई पड़ता कि लोग देखते हैं, हाँ देखो ये कितना दिन से आया, थोड़ा दिन में आकर इतना बड़ा पोस्ट में आ गया, तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, इसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ रहा है, घमंड बढ़ रहा है, इसकी अहंकार बढ़ रहा है, इसके माध्यम से भगवान के चरण में प्रेम नहीं मिलता है। लक्ष्य को नहीं समझा, जीवन का लक्ष्य क्या है भगवान के चरण में, लक्ष्य है तो तुना ने क्या नम्रंती फलिना वृक्षा नम्रंती गुणिना जना है, ह्यूमिलिटी। कोई भक्ति में आगे बढ़ता तो ये दिखाई पड़ता कि वो नम्र हो जाता है, कितने हम्बुल हो जाता है, उसी से पता चलता कि भक्ति में आगे बढ़ता। कोई भक्ति में आगे बढ़ता पूरा दैन्यता, उसके पास दैन्य भाव आता है। भक्ति में ठाकुर कहते परमहंस ठाकुर, फिर भी भक्ति मेरे पास कोई सद्गुण नहीं है, गोपीनाथ मेरे पास कोई भी सद्गुण नहीं है, आमी तो दुर्जन आती है, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, सदा कामरत हूँ, मेरे मन में सभी प्रकार के संसार को भोगने का ऐसी बड़े दैन्यता से पासरा करते, मेरी ये दुर्गुण कैसे हटेगा पासरा कर, वो नहीं कहते मैं परमहंस बन गया हूँ। प्रभुपाद ने भी नहीं कहते मैं महान शुद्ध भक्त बन गया, नहीं भक्त बनने के लिए थोड़ा कोशिश करता हूँ, प्रभुपाद जैसे वैष्णव करते, राम सूची का महा बन गए, अभी भक्त बन गए, हमारे पास में सब सद्गुण है, हमको यदि कोई थोड़ा बल देगा है तो फिर बोला है क्या मुझे इसने बल दिया, क्या हो रहे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, अभी तुम्हारा नाम में कंप्लेंट दे कि तुम्हारा मंदिर से निकला ना दूंगा तो पहचान नहीं पहुंचेगा, नहीं मैं कौन हूँ, मैं पहचानेगा नहीं मैं कौन। ऐसा ही जो भावना है, ये सब पूजा मान प्रतिष्ठा की भावना है, ये भक्ति लता जैसे देखने पर भी मैंने ये प्रतिष्ठा दिखाई पड़ता कि ऐसे बढ़ रहा है भक्ति, भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, इसका पूजा मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है समाज में, लोग इसको बहुत जय जयकार कर रहे हैं, और वो भी बड़ा अहंकार से घमंड से चलता जाता आता देखते, लेकिन में भक्ति में नहीं बढ़ता है, भक्ति में आगे बढ़ता है तो नम्र हो जाएगा, दैन्यता आएगा, वो कभी पूजा मान प्रतिष्ठा लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा हमेशा। अब तो सोचेगा कि मैं वैष्णव के सेवक हूं, वैष्णव का सेवक हूं, मैं दासों के दास हूं, ऐसी भावना आएगा। तो इसी प्रकार जब हमें ये सब सेक जल मैंने जो नहीं सॉरी सेक जल का जो जल डालते हैं भक्ति लता का बढ़ रहा है, भक्ति लता में ऐसे जल डाला जाता है, ये जो श्रवण श्रवण कीर्तन हम करते हैं, ये श्रवण कीर्तन करने के माध्यम से ये सब बढ़ता है। ये कैसे होता है ना, क्योंकि अपराध के साथ नाम लेते हैं, जो अपराध के साथ में नाम लेते हैं ये भौतिक इच्छाएं पूर्ण होते जाते हैं। जैसे कि भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, पूजा मान प्रतिष्ठा से बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ेगा ना, जब अपराध के साथ नाम लेते रहेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण करता है लेकिन सारे अपराध भी करते, जो नाम अपराध जैसे भी आलोचना हुआ तो नाम अपराध भी करता है, भगवान के नाम भी लेता है, तो फिर उपशाखा बढ़ी जाए, ये उपशाखा जो भक्ति लता जैसे देख रहा है लेकिन भक्ति लता है नहीं, वो बढ़ते जा रहा है आगे, भौतिक प्रतिष्ठा पूजा मान प्रतिष्ठा भौतिक दृष्टि से उसका बढ़ रहा है, लेकिन मूल शाखा जो मूल जो लक्ष्य है कि प्रेम लतिका व प्रेम का लता व प्रेम भक्ति, ये लता आगे नहीं बढ़ रहा, शब्द हया मूल शाखा बाढ़ीते ना पाए, ये नहीं बढ़ पाता, ये वहीं रह गया, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, भगवान के चरण में प्रेम नहीं बढ़ रहा लेकिन संसार में पूजा मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा। तो इसलिए ये भक्ति जात अनर्थ है, भक्ति में शामिल होने के प्रांत भी हम इसको सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं पाते तो फिर भक्ति में आगे नहीं मैंने प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रथम ही उपशाखा करे छेदन तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन, इसलिए क्या कर्तव्य साधक का, प्रथम ये मूल से जो इसको जड़ से काटे, इसको पहचाने, भुक्ति मुक्ति की इच्छा, सर्व संसार को भोगने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, और निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसन पूजा मान प्रतिष्ठा, ये जो से उपशाखा इनको पहचान कर इनसे इनको पहले सार जड़ से उखाड़े, इसको उखाड़ने के बाद उपशाखा करे चेतन तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन, तभी ये वृंदावन जाएगा। प्रेम प्रेम भक्ति का जो लता, प्रेम भक्ति का जो लता, ये बढ़ते बढ़ते वृंदावन हम ले जाएगा, हमें वृंदावन तक भगवान चरण कमल में पहुंचा देगा। नहीं तो इसको यदि हम जैसे नहीं काटेंगे प्रारंभ से, पहचानेंगे नहीं, ये साथ साथ चलते रहेगा। और राम सोचे कि हाँ, ये हमारे भक्ति में, भक्ति करने के कारण ऐसे मिल रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पूजा मान प्रतिष्ठा मिल रहा। मैं 20 साल की भक्त हूँ, तो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे लोग, करना चाहिए, ये स्वाभाविक है, प्रणाम कर रहे स्वाभाविक है, क्या है, तो घमंड बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको जानते हुए प्रथम ही उपशाखा कराए छेदन, सबसे पहले ही जो उपशाखा है, इनको सब खाटो, इनको जड़ से उखाड़ी फेंको। धान धान के खेत से जैसे वो दूसरे धान देखने वाला पेड़ को उखाड़ को फेंका जाता है, इसी प्रकार ये भक्ति भत्ता के साथ और जो बढ़ रहा है, दूसरे जो गुण से बढ़ रहे, भौतिक लाभ, पूजा मान प्रतिष्ठा लाभ आदि, ये सब को उखाड़ के फेंको बाहर, हैं, तभी बढ़ोगे। तो इस प्रकार ये भक्ति जात अनर्थ संक्षेप में बता, क्योंकि अब मैं और भी कुछ आज लास्ट दिन है, और कुछ थोड़ा आलोचना करेंगे। जैसे पहले हम देखे थे कि पाप और ऑफेंस, पहले आलोचना किए थे दुष्कृति जात अनर्थ और सुकृति जात अनर्थ। तो पाप और ऑफेंस में, अपराध में क्या अंतर होता है, हैं? पाप जो होता है, इसको शास्त्र में कहा जाता है कि धूलि का लेप जैसे ही, कोई स्वच्छ वस्तु है, कोई मिरर है, इसका पर धूलि ऐसे ही लग गया, धूलि बैठ गया, लेकिन इस धूलि फिर साफ किया जा सकता है, हैं? यदि हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, सावधानी से जप करने से ये लेप चले जाता, कौन सा, चित्त मार्जन, चित्त दर्पण मार्जन है, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है हरि नाम संकीर्तन करने से, नाम जप करने से। लेकिन दूसरे प्रकार जो अपराध होता है, ये वज्रलेप के समान होता है, पत्थर का लेप जैसे लग गया लेप, और उसको हरि नाम करने पर भी ये मिटेगा नहीं है। इसलिए पहले से आलोचना हो चुका था, जो वैष्णव अपराध बड़े जघन्य है, उसी वैष्णव से जाकर अपराध क्षमा मांगना पड़ता है, नहीं तो आप इससे कोई त्राही नहीं और दूसरे उपाय नहीं है, उसी वैष्णव से क्षमा प्रार्थना करना, उनसे ही माफी मांग लेना, यदि क्षमा नहीं करता फिर बाद में हरिनाम। जो अनर्थ निवृत्ति, जैसे हम जब आलोचना किए हैं, ये अनर्थों को निवृत्ति करने के लिए कैसे निवृत्ति हो सकते है, लेकिन कुछ बाधाएं हमारे सामने आते हैं जिसके लिए निवृत्त नहीं हो पाते, हमारे पास में हमारा अनर्थ है, ये भी इनके माध्यम में पता लग जाता है। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि पांच प्रकार के ऑब्स्टैकल्स प्रोसेस ऑफ अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों को दूर करने के लिए पांच प्रकार की बाधाएं मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले लय, लय का अर्थ होता है, कहते कि जब आप कीर्तन करते हैं हमको बड़ा उत्साह आता है नाचने में, भक्तों के साथ में कीर्तन करते थे उत्साह की नाचते हैं, लेकिन भागवत कक्षा में बैठते ही सो गए, हैं? भागवत कक्षा भागवत होता है, ओम नमो भगवते वासुदेव कहते कि बस सो जाए, श्रवण में रुचि नहीं है, कीर्तन में नाच रहा है लेकिन श्रवण में सो गया, सोने के समय सो गया। भागवत कहा कि यदि भगवत कथा श्रवण में रुचि नहीं है तो जो कुछ करता है वो सारा देखुआ है, हैं? धर्म संुष्ठिता पुंस विश्वक्षण कथा सुजो न उत्पाद जतिरति समय वही केवल, वृथा परिश्रम कर रहा है, बहुत फिजिकल परिश्रम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है सेवा, लेकिन भागवत कक्षा होगा तो सो गया, भागवत कथा सुनते ही निदा गया, प्रवचन सुनने में इसको रुचि नहीं है, ये अनर्थ है। मैंने ये बाधा ये कुछ बात, यदि श्रवण भी कर रहा है, नहीं श्रवण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, कीर्तन श्रवण दोनों चल रहा है, लेकिन इसको कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा है, तो फिर ये अनर्थ निवृत्ति इस प्रकार के व्यक्ति की द्वारा अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकता, अनर्थ दूर नहीं हो सकता। ये तीनों को साथ साथ श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों होगा तभी तो अनर्थ दूर होंगे। यदि वो कीर्तन कर रहा है श्रवण में सो जाता है, बाकी कीर्तन श्रवण करके स्मरण नहीं होता है, तो फिर वो व्यक्ति अनर्थ में निवृत्ति नहीं कर सकता है, ये बाधा है, अनर्थ निवृत्ति करने में बाधा। इसको कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती इस प्रकार जो स्थिति, इसको कहते लय। दूसरे वो कहते विक्षेप, विक्षेप का अर्थ जप करने के समय में अन्य बात चिंतन करना है, जप कर रहे हैं लेकिन ये माला तो चल रहा है, हाथ फिर रहा, अंगुली फिर रहा है, लेकिन मन अपने काम कर रहा है, मन सोच रहा है कि मेरा दोस्त जो पढ़ रहा था वो मेरे साथ वो क्या कर रहा है, वो अमेरिका चला गया था, इंजीनियर था वो, वहाँ के यहाँ तो हरे कृष्ण मैंने आंगुली चल रहा है, लेकिन वो मन अपने काम कर रहा है, वो कहीं दूसरे जगह में सोचते रहा, दूसरे कई बात सोच रहा, घर के बात, इस मित्र की बात और कई प्रकार की इंद्रिय भावना का चिंतन कर रहा है। तो ऐसे कहते कि विक्षेप टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट मंडेन नॉनसेंस ड्यूरिंग डिवोशनल एक्टिविटीज। तो ऐसे कहते विक्षेप अर्थात भजन के समय में अन्य मनस्क इधर उधर माइंड जाना, जब हम कर रहे ये अनर्थ निवृत्ति का दूसरी बाधा है, हमारा अनर्थ निवृत्ति करने के लिए एकाग्र चित्त से भजन करने ये नहीं देता है, हम भजन कर रहे हैं तो मन दूसरी जगह में भटक रहा, तो इस प्रकार व्यक्ति भी अनर्थ निवृत्ति करना बड़ा कठिन होगा उसके लिए। इसलिए वो कहते हैं कि अप्रतिपत्ति कि यथा ये व्यक्ति को बड़े सावधान से भी क्या कर रहा, सावधान से भी श्रवण कीर्तन कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा, स्मरण करने के लिए बहुत प्रयास भी कर रहा है और मन भी इधर उधर भटकता नहीं है जब भी करने के समय में है, लेकिन फिर भी उसका स्मरण नहीं हो रहा है, क्लास में सिंसियरली बैठता है भागवत कथा में, सोता नहीं है और सुनने के लिए पूर्ण प्रयास करता है और थोड़ा बहुत भी थोड़ा तो वही क्लास में बैठता है याद रहता, लेकिन क्लास हॉल में उठ कर मंदिर आप से बाहर चले जाता है तो सारे भूल जाता है, हैं बेग बेगा बहुत जल्दी कुछ याद रहता सुनता फिर बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ प्रारब्ध ऐसे ही बना हुआ है कुछ अनर्थ कोई दुष्कृत जाता तो वो प्रकार व्यक्ति फिर अनर्थों को निवृत्ति करने में बड़े कठिन होता है। बोथ लय विक्षेप अब्सेंट मैंने वो इसके सावधानी से उसकी जब मैंने क्या कीर्तन भी कर रहा श्रम भी कर रहा स्मरण करने के प्रयास कर रहा अब बाद में विक्षेप भी मन भी इधर उधर नहीं जा रहा जो जब कर रहा हरे कृष्ण वास्तव हरे कृष्ण में मन मति है इधर उधर भी दूसरा भौतिक चिंतन नहीं जा रहा लेकिन इतने होने पर भी फिर भी वो ऐसे अपने को माने क्या संपूर्ण रूप में भगवान की स्मरण में भगवान को लगाना जब करने में चैंटिंग पूरे ठीक ढंग से फिर भी नहीं हो पा रहा उसका उसके मन में कोई प्रेम माने कुछ भाव ऐसे उत्पन्न नहीं हो रहा इनकैपेबल ऑफ डिसइंटरेस्टेड इन हियरिंग एंड चैंटिंग फिर भी श्रवण कीर्तन करने में उसकी कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा ये तीसरे प्रकार के अनर्थ है अनर्थ निवृत्ति का बाधा है। चौथा रहता है कि कसाय इट इज डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू डिस्प्ले सच फॉल्ट एज एंगर ग्रीड एंड एरोगेंस ड्यूरिंग डिवोशनल एक्टिविटी। जो आप सेवा करते हैं सेवा करने के समय में ये सब दिखाई पड़ना आपको जब आप प्रसाद सर्विस का इंचार्ज बना दिया गया है तो आप आजकल जो प्रसाद सर्विस देखना है आप लीडर है तुरंत ही आपके मन में आके क्या है मैं इंचार्ज हूँ और कौन कौन सर्विस मेरे साथ करेगा ना ये तो आपके साथ में चार पांच व्यक्ति दे बोला ए मैं जो कह रहा सो करना बैठो हैं जल्दी थोड़ा सा वो उधर गया क्या है मेरे बात नहीं सुनता है तुरंत क्रोध आ जाएगा तुरंत क्रोध आ जाता है। तो सेवा के समय में ये सब फर्क दूसरे जो प्रकट हो जाता है एंगार क्रोधित हो जाना वो आपको महाप्रसाद फेस्टिवल है राधाष्टमी का कोई फेस्टिवल है आपको महाप्रसाद का इंचार्ज बना देंगे जितने महाप्रसाद आपके अंडर रहेगा और आप सब भक्तों को बांटने के लिए फिर दोगे प्रसाद आपके पहुंच गए आपके पास में सब और आपके जो कोई असिस्टेंट होगा बोलेगा इसमें से जो अच्छा केक है ना देखो ना चार पांच केक साइड में रखना है नहीं पीछे रखना है वो साइड को ये बांटने के लिए नहीं है ये साइड में पीछे से रखना है। तो ये जो सब जो अनर्थ है लोभ है ये लोभ के कारण एंगर मैंने क्रोधित हो जाना रजगुण के कारण से बा कुछ लोभ रखना सेवा के समय में कुछ और मैं जो इंचार्ज बन गया तो कुछ भी मेरे को फायदा मिल जाए कुछ इसमें लाभ उठाना है कुछ लोभ रखना और एरोगेंस दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना करो इस फेस्टिवल में आपको इंचार्ज बनाया गया था न पिछले बनाया गया था लेकिन इस फेस्टिवल में दूसरे को बना दिया गया इंचार्ज तो आप बोले अच्छा है मेरे को ऐसा इंचार्ज बनाया जो बना है तो उसका सारा दोष देखना उसके प्रति ईर्ष्यालु रहना कभी कहीं फॉल्ट बैठता तो तुरंत पकड़ने के लिए तैयार रहना हमेशा ईर्ष्यालु रहना एरोगेंस फाइटिंग करना के मोटे मोटी में रहना हमेशा है। इसके कुछ ये सेवा करने के समय में यदि ये सब दिखाई पड़ता है फिर ये अनर्थ निवृत्ति में बाधा डालते हैं। इसको कहते हैं कि कसाय कृष्णा चक्र ठाकुर कसाय माने जब एंगार क्रोधित होना लोभ रखना कुछ भौतिक फायदा सेवा के माध्यम से दूसरे के प्रति एरोगेंस हुआ, दूसरे प्रति क्या है भावना ऐसे रखना कि उसके कुछ ना कुछ बदलाव लेने की भावना, वैसे ही कुछ रखना एरोगेंस। तो ऐसे ही जब भावना सेवा के साथ साथ हमारे मन में आएगा तो ये भी हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा भाई, ये अनर्थ निवृत्ति भी नहीं होंगे। इस प्रकार व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति करने में समर्थ नहीं हो, तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति की बाधा है उन्होंने। और कभी रसास्वाद, रसास्वाद ऐसा ही है कि आपको भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतनी अटैचमेंट है, यदि भी भौतिक ने आप भक्ति के कार्य करते हो, श्रवण कीर्तन करते हो, लेकिन मन फिर भी वो रस को आस्वादन कर रहा है। कौन सा? भौतिक इच्छा इंद्र तृप्ति का। जैसे धरो गौर आरती में कोई डांसिंग कर रहा है, नाच नृत्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मन वो साइड में देख रहा, कोई लड़की डांस कर रहा तो उसका माइंड वहां है, यहां नाच रहा है, लेकिन माइंड उसको और रस में आस्वादन है, भौतिक रस है, उसको जो सेक्स दी जा रही वो वहां पर है, वो किसी लड़की को देख रहा है। इसलिए माया इतने स्ट्रांग नहीं, कीर्तन के अंदर में भी प्रवेश कर सकता है। कोई क्यों होता लिंग कीर्तन लिंग करने वाला, हर दिन लीडिंग नहीं करेगा, तो किसी लड़की के साथ उसके संपर्क है तो वो आज आई कीर्तन में, आज मंदिर में आए तो उसी दिन में लीडिंग करूंगा, आज लीडिंग कीर्तन लीडिंग करना है। और कीर्तन में नाच रहा था लेकिन वो देखवा केवल, सब कुछ देखवा होता है, नाचना गाना, लेकिन इस माइंड और कहीं लगा हुआ, तो उस व्यक्ति का भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतनी इसकी रस, उस भौतिक रस को आस्वादन करने में इतनी लिप्त है, ये श्रवण कीर्तन स्मरण कोई भी काम में उसके नहीं आते हैं। वो बैठा हुआ ऐसे कीर्तन करने पर भी जोर से नाच रहा गा रहा, लेकिन मौन इसकी और कहीं लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ। कुछ भी काम कर जा करता है लेकिन श्रवण करता है, क्लास में बैठ जाता, कुछ भी करता है लेकिन उसकी माइंड और कहीं घूम रहा, रस आस्वादन कर रहा, भौतिक रस इंद्रिय तृप्ति का रस को आस्वादन कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति भी अनर्थों को दूर नहीं कर सकता, इसको इस पर ये अनर्थ को दूर करिए एक बाधा है, हैं। इसलिए भक्ति विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर पांच प्रकार की अनर्थ निवृत्ति की बाधाएं कहते हैं, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय और रसास्वाद। इसको जानते हुए साधक को बड़े सतर्कता से अनर्थों को इनको सब हटाना चाहिए, सतर्कता से देख रहा है, देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा अनर्थ कहाँ पर है, कहाँ कौन सा स्तर पर हूँ, और इसको कैसे हटाने के लिए प्रयास करने के लिए, जब प्रयास करेगा सिंसियरली फिर हट सकेगा। तो इसलिए ये सब टेक्निकली आचार्य लोग ने बताए। इसके आगे उन्होंने कहते कि अनर्थ निवृत्ति कैसे होते हैं, पाँच स्तर है अनर्थ निवृत्ति का। कहते एकादश एकादश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्राय की, पूर्ण और अत्यंतिक। और नथन अनर्थ निवृत्ति का भी ये पांच स्तर है उन्होंने बताए। जब हम और कौन सा स्तर में कौन सा अनर्थ, जैसे ही नवदा भक्त सबसे पहले क्या है, श्रवण और कीर्तन। जब भक्त साधक जब श्रवण कीर्तन स्टार्ट कर देता है तो प्रारंभिक स्तर पर, तो ये जो प्राय अनर्थ नष्ट हो जाता है, जैसे सुकृति जाता दुष्कृति जाता अनर्थ, ये पार्शियली नष्ट, 25% पार्शियल क्या अर्थात 25% अनर्थ वैसे नष्ट हो जाता है। कौन सा स्तर पर है, श्रवण कीर्तन पर, इस स्थान पर। ऐसे ही मैंने प्रारंभ करने से साधक दीक्षा लेकर गुरु से जब श्रवण मैंने श्रवण कीर्तन शुरुआत कर देता है, श्रवण कीर्तन के स्तर पर प्राय 25% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। श्रवण कीर्तन भरिया इसको भजन श्रद्धा तथा भजन क्रिया, ये भजन क्रिया की अंतिम अवस्था में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर करते जो भजन करते करते भजन करते रहता है, भजन क्रिया इसको अनर्थ निवृत्ति के पहले, ये भजन क्रिया की अंतिम अवस्था में जितनी भी अनर्थ है उसकी रहता है, अनर्थ के प्राय 25% समाप्त हो जाते साधक के। भजन क्रिया निष्ठा, अनर्थ से निष्ठा के स्तर पर जब भजन में निष्ठा हो गया, उसके मैंने अर्थात वो संकल्प ले लिया, मैं बैठूँ एक जगह बैठूंगा, सोलह माला जब कंप्लीट करूंगा, उठूंगा नहीं इस स्थान पर, निष्ठा करते पूरा संकल्प ले लिया, भाव लिया कि नहीं मैं एक सोलह माला कंप्लीट करके स्थान से उठूंगा, ऐसे जो निष्ठा के स्तर पर आ गया तो फिर इसकी अनर्थ प्राय 50% नष्ट हो जाता है, 50 से 60% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं जब निष्ठा भजन में इसको निष्ठा आ गया। नैष्ठिकी भजन, भजन दो प्रकार के, अनैष्ठिकी नैष्ठिकी। तो नैष्ठिक भजन निष्ठा के साथ जो भजन कर रहा है उस तन को स्तर पर आने से 50-60% उसकी अनर्थ नष्ट हो जाती है। उसके बाद कहते ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्राय की जो भक्ति करने में नहीं भजन में उसको रुचि आ जाता है, है? निष्ठा इसके बाद रुचि अर्थात भक्ति करने में जब करने में इसको आनंद आ रहा है। सोलमाला कंप्लीट हो जाने पर भी बोले अरे टाइम है और 2-4 माला कर लेता हूँ, फिर इसको आनंद आ रहा है, मैंने जब करने में आनंद आता है, इसको रुचि कहते टेस्ट। जब कर रहा है निष्ठा केवल नहीं नाम जपने में इसको एक प्रकार का टेस्ट अनुभव हो रहा है, उसको आनंद आ रहा है। तो इसलिए 16 माला जपने के बाद भी जब समय मिलता है वो कहते हैं कि और 2-4 माला भी कर लेता हूँ, ये समय है क्या करूँ प्रगल्प करने का। अच्छा है कि यदि मैं जप नहीं करूँगा तो कहीं प्रगल्प होगा, इसलिए भाई फिर वो अपने हरे कृष्ण कह रहा है, उसको एक प्रकार अंतकरण में आनंद भी अनुभव हो रहा है। जैसे रुचि के स्तर पर आता है तो फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट प्राय की प्राय 90% इसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं रुचि की, रुचि जब उत्पन्न होता है भजन में। इसकी बात कहते कि निष्ठा रुचि भाव, जब भाव के स्तर पर आ जाए नीचे मैंने आसक्ति और भाव के स्तर पर आ जाता है तभी प्राय संपूर्ण रूप में कंप्लीटली 100% इसके अनर्थ नष्ट हो गए। जैसे भरत महाराज भाव के स्तर पर आंख से अश्रु बहना, कभी कभी पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाना, भगवान की लड़ाओं को स्मरण करते ही कभी कभी रोमांच आ जाता है, भगवान की कथाओं को सुनने से आंख से अश्रु आ जाता है, ये जो लक्षण दिखाई पड़ता कभी कभी भाव के स्तर पर, तो इस स्तर पर प्राय अनर्थ नष्ट हो गए, समझ रहे, 100% नष्ट हो गए। लेकिन अभी भी जड़ नहीं उखड़ा, पाप करने की जो प्रवृत्ति वो सुप्त भाव से रहता है, ये गारंटी नहीं कि ये पूरा संपूर्ण चला गया। भाव के स्तर से भी व्यक्ति को पतन होने का संभावना रहता है। भरत महाराज की तरह भरत महाराज भाव के स्तर के भक्त थे, वो उनके आंख से अश्रु बहता था, शरीर पुलंकित रोमांचित हो जाता था, भगवान के नाम देते थे, एकांत भजन करते थे, सालग्राम की पूजन, लेकिन फिर भी पतित हो गए, फिर भी हरिणी के पीछे आसक्त हो गए। लेकिन जब अत्यंत की अर्थात जो भगवान के चरण प्रेम प्राप्त कर लिया, भगवान के चरण कमल को प्राप्त, जब प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिया तो फिर प्रेमी भक्त को फिर पतन होने का कोई संभावना नहीं, उसकी अनर्थ जड़ से ही उखाड़ गए, वो फिर दोबारा कभी भी किसी भी उपाय से माया इसको कवलित नहीं कर सकता है। इसलिए विश्वनाथ चक्र कहते कि साधक की स्तर है एकादशवर्तिनी, ये भजन माने भजन क्रिया के माध्यम से ही 25% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, भजन में निष्ठा आने से 50% नष्ट हो जाते हैं, प्राय इसको जब भी रुचि उत्पन्न टेस्ट उत्पन्न होता था प्राय 90% के समाप्त हो गए समझा जाता है। जब वो भाव के स्तर पर आता था 100% अनर्थ समाप्त हो गए, लेकिन इसकी जड़ जो है बीज रूप पड़ा हुआ वो अभी तक नष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब प्रेम के स्तर पर आता था ये बीज भी समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार साधक के अनर्थ निवृत्ति के स्तर को उन्होंने बताते हैं। ये संक्षेप में हम लोग आलोचना किए हैं, विस्तार से नहीं हुआ, लेकिन अंतिम में ये कहा जाता है कि जब प्रेम कैसे प्राप्त करें, चैंटिंग विदाउट ऑफेंस। यदि हम अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेते हैं तभी भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। वही भजन क्रिया प्रारंभ किए लेकिन भजन क्रिया को यदि आगे अपराध शून्य होकर जब भगवान के दस नाम अपराध कर नाम लेंगे तभी हम भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए मुख्य लक्ष्य है कि अपराध शून्य होकर भगवान के नाम लेना, विशेष रूप में कलयुग में ये युग धर्म है क्या, हरिनाम संकीर्तन, हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तैव गति अन्यथा। इस युग में और दूसरे गति नहीं, ये एकमात्र गति है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना, इस कलयुग के लिए दूसरी गति नहीं है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग रंगजे। तो इसलिए अपराधों को जानते हुए दशनाम अपराध को, इन अपराधों से माने मुक्त होकर विशेष रूप में वैष्णव अपराध से मुक्त होकर हम जब भगवान के नाम जपेंगे तभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, साधक अपने स्तर बढ़ेगा, भजन क्रिया से फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है। कोई कहते कि प्रेमानंद की परे भी और एक आनंद है, कौन सा है? कोई भक्त लोग कहते हैं कि नहीं प्रेम प्राप्त करना ये ठीक है, लेकिन प्रेम जिसको प्राप्त है तो वो सेवा करेगा। प्रेमानंद की परे भी और एक आनंद है, वो है सेवा आनंद, सेवा में जो आनंद आता है हैं, कुछ भक्त होते कि उनके पास में प्रेम का है लेकिन इसको भगवान की सेवा के कारण छुपा के रखते। सुखदेव गोस्वामी भागवत पढ़ते थे, भागवत तो प्रेमी भक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राधारण की पोता है तो सुखदेव बने, लेकिन फिर भी पूरे भागवत में उन्होंने कभी राधा के नाम डायरेक्टली उच्चारण नहीं किया। ओना यार आधी तो नुणांग एक बार कहे भागवत को थोड़ा सा इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली नाम नहीं लिए, क्योंकि जानते थे कि मैं यदि मेरी स्वामिनी के नाम लूंगा तो मैं फिर भाव में आ जाऊंगा अष्टसती दीप, एक बार मैं भाव में आ गया तो फिर मेरे को प्रवचन करना संभव, ये परीक्षित को भागवत सुनाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए जानबूझकर इसको अवॉइड किए। कभी कभी महान भक्त ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान की सेवा को प्राधान्यता देने के कारण अपने भाव को संबलित करके रखते हैं, इसको दबा फिर अपने भक्त सेवा करते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो भागवत के पढ़ते रहे, लेकिन यदि वो राधा कृष्ण की लड़ाओं को थोड़ा सा राधा के नाम उच्चारण करते तो तुरंत ही वो भाव में आ जाते, फिर वो सेवा नहीं कर पाते। सुखदेव ने परीक्षित को भागवत नहीं सबल करा पाते हैं। कभी कभी प्रभुपाद ने भागवत की कक्षा देते थे, देते हटात बंद हो जाते, पूरे कई 15 मिनट 20 मिनट बैठ गए, फिर कुछ नहीं है, कई बार ऐसे ही हुआ प्रभुपाद। तो फिर भक्त बोलते क्या करें, पछे बोले प्रभुपाद आप ऐसे कभी कभी भागवत कथा कहते कहते हैं और फिर बंद पूरे समाधि हो जाते, बस कुछ बोलते नहीं, फिर चुपचाप बैठ गए बस, तो क्या करेंगे। तो प्रभुपाद कहेंगे उस समय आप लोग सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना है, हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। अर्थात वो अंतकरण में भाव में आते हैं भगवान के स्मरण, लड़ा किसी लड़ा ऐसे ही बोलते थे स्मरण आ गए भगवान, फिर समाधिस्थ हो जाते, उसको बाह्य ज्ञान लोप हो जाता है, बाह्य सारे ज्ञान है। लंदन में इस प्रकार राधा लंडनेश्वर मंदिर में प्रभुपाद ने प्रवचन करते थे, भागवत की कक्षा दे रहे थे, हटात भागवत कक्षा के बीच में शब्द हो गए, कुछ नहीं बोले और शांत हो गए, जैसे कुछ देख रहे आंख खुला है और कुछ नहीं बोले, शांत हो पूरे प्रवचन बंद, और सब लोग देखे 10 मिनट 15 मिनट हो गए, सब क्या करेंगे, स्टॉप देते बाद में 15 मिनट फिर प्रभुपाद ने स्टार्ट किए बोलना। तो पूछे भाई क्या कर रहे थे आप, प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, क्या हुआ नहीं आप लोग देखे नहीं, हमारे मंदिर में आज नारद जी और ब्रह्मा जी पधारे थे, हैं दोनों आए थे दर्शन करने, तुम लोग नहीं देखा, तो आप लोग नहीं देखा हैं। तो पास में गए कि देखो तुम ऐसा मत करो, मैं तो अपराधी बनूंगा, मैं बैठा हूँ और वो मेरे से सीनियर जो वरिष्ठ भक्त आते हैं तो उनके लिए आसन होना चाहिए, इसलिए आप लोग हमेशा दो व्यासासन रखना, इसलिए आज भी राधा रमेश्वर मंदिर में वाटर में दो व्यासासन रहता है, एक ब्रह्मा के लिए एक नारद के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मा नारद भी आते हैं कभी कभी हमारे मंदिर में दर्शन करने, देखने आते हैं कैसे भक्ति चल रहा है, तो इसलिए वो सब हम देख नहीं सकते, सब कुछ सर्वसख्य में जो महाभागवत सब कुछ देखते हैं, रूप सनातन आदि राधा कृष्ण को दर्शन करते, राधा कृष्ण राम को दर्शन करते, लेकिन हम नहीं करते हैं। राधारानी आती थी रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे अपने साड़ी, वो भजन करते थे तो वो पीछे साड़ी से ऐसे छत्र की तरफ धारण करके पीछे खड़ा रहते थे इनकी सहाय करने के लिए, धूप में भजन करते थे हैं। तो इस प्रेमी भक्तों की, लेकिन ये प्रेमी भक्त जो होते हैं कभी कभी अपने प्रेम को बाह्य से साधारण जनता में प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा को अधिक प्राधान्यता देते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे ये यदि हमेशा प्रेमी जब महाभाव को पकड़, जैसे भाव को पकड़ कर ससुर रहे रोएंगे नाचेंगे तो सेवा कैसे होगा हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा करते थे कि ये प्रेमानंद से भी परे और एक आनंद है, वो है सेवा के आनंद, सेवा के माध्यम से जो आनंद होता है, लेकिन ये कृत्रिम रूप में नहीं होगा, जब भाव प्रेमी भक्त है वो इसको आनंद है, लेकिन बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है कि उनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन गोस्वामी लोग ने भी इसमें बाह्य रूप से दिखाते नहीं थे अपनी भक्ति को, उन्होंने सबसे दैन्य कहते कि हे राधे हे ब्रजदेवी के हे नंद सुना कुत गोवर्धन पाद पत पतड़े कालिंदी बने, कहाँ है आप, ऐसे ढूंढते थे यदि वो हमेशा कृष्ण दर्शन में रहते थे हैं। प्रभुपाद जी जो भगवान को साक्षात दर्शन किए उसके ही प्रमाण है बाबर प्रभुपाद जी के साथ कृष्ण की जरूरत, लेकिन प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान को देखा, मैं देखा भगवान के साथ में, भगवान मेरे साथ ऐसे ही लड़ा किए थे जैसे मायावती लोग कहा करते थे, काल स्वप्न में आए थे कृष्ण ये बोले वो बोले, कई प्रकार के बहाना बनाते, लेकिन प्रभुपाद ने कभी नहीं, प्रभुपाद जी कोई पूछता था कि आप प्रभुपाद जी आप कृष्ण के बारे में कुछ एक्सपीरियंस है, आप इतने बड़े कृष्ण कृपा स्मृति आपको कहते हैं आप कृष्ण के महान भक्त हो, तो भगवान ने आप कृष्ण को भी देखे, भगवान ने कोई आपको कुछ बोला तो कहते ऐसा कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं, तो देखा देखवा नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्य विदेश जाने के पहले भी प्रभुपाद जी एक शिष्य बनाए थे इंडिया में, भारत में झांसी में, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, बहुत बड़े सांस्कृत प्रोफेसर थे, बोले आगरा से यूनिवर्सिटी में थे, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए, दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने कैसे शिष्य बने, उस समय प्रभुपाद जी फेमस नहीं बने थे, महान आचार्य नहीं बने थे, साधारण प्रचारक थे, गृहस्थ थे, झांसी में प्रचार करते थे, लीग ऑफ नेशन बनाए थे तो प्रचार करते प्रवर्तन देते। लेकिन ये प्रभाकर मिश्र प्रभुपाद जी पास आया करते थे, बहुत तार्किक थे, बहुत युक्तिकर करते थे, घमंड भी था कि मैं संस्कृत के प्रोफेसर हूँ, संस्कृत के प्रोफेसर हैं। तो प्रभुपाद जी बातचीत करते थे, आते थे प्रभुपाद जी मिलना है। तो ये कैसे शिष्य बने, एक बार ससुरूप द्वारा महाराज और कई लोग हमारा इसकन भक्तों को इंटरव्यू करने के बड़े, आप कैसे प्रभुपाद जी पहला डिसाइपल बने। लेकिन वो कहे कि नहीं, मुझे प्रभुपाद जी ने मना किया है बोलने के लिए, उस घटना को प्रभुपाद जी ने मना, मुझे मना किया बोलने के लिए। लेकिन उसको सब लोग समझाए कि भाई अभी प्रभुपाद जी ने मना किए थे, लेकिन प्रभुपाद जी तो अभी प्लैनेट में नहीं है, नित्यालय में प्रवेश कर चुके, तो अभी बोल सकते हो, अभी बोलने से प्रभुपाद जी का कीर्ति आगे बढ़ेगा, उसमें आपका क्या नुकसान है। तो बहुत कहने पर समझाने पर फिर उन्होंने बताया किस प्रकार उन्होंने पहला शिष्य बने। तो बोले वो बड़े घमंडी थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे, उनके बड़ा अहंकार था, प्रभुपाद जी तो ऐसे ही देख सोचते थे यार क्या है, ग्रेजुएट है एक, लेकिन संस्कृत का कोई मेरे जैसे ज्ञान है इनके पास थोड़ी है, मैं पंडित हूँ, शास्त्र की व्याख्या कर सकता हूँ, इनके सब कुछ बहुत कुछ कमन था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने सुबह सुबह आते थे, कभी कभी साथ प्रभुपाद जी के साथ वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे, दोनों साथ में जब करते करते मॉर्निंग वॉक जाते थे, तो एक दिन आया तो प्रभुपाद जी ने अपने बैठे हुए सिंहासन में कुर्सी में बैठे थे हैं, और लेकिन प्रभुपाद जी आंख पूरा मुद्रित था और बड़े भाव से जब करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद जब करते थे अश्रु आंख से टपने के क्या टपकता था, कभी कभी वो देख रहे थे दूर से, पास में आ गए खड़े, लेकिन प्रभुपाद जी पता नहीं क्या आ गए, वो तो अलग कुछ समाधि जैसे थे, तो वो उनको आश्चर्यचकित नहीं कर रहा था कि प्रभुपाद जी आंख बंद, लेकिन उनको दृष्टि था कि उन कान में उनके गले में एक सुंदर कदम फूल की माला था, एक कदम फूल की माला सुबह सुबह उनके गले में था, और कभी वो कदम फूल के सीजन नहीं था, कदम फूल का जो सीजन होता है बारिश के सीजन, इस समय कदम फूल होता है, तो वो सीजन नहीं था, तो सीजन कुछ और सीजन था, मैंने जैसे ठंडी का सीजन बात कोई सीजन था ऐसा ही, तो वो सीजन में कदम फूल नहीं होता है, ठंडी के समय में, ठंडी सीजन में, विंटर सीजन में कदम फूल नहीं होता, तो वो लेकिन प्रभुपाद जी गले में कदम फूल की माला था, वो ऐसे कदम फूल माला था कि उसके ऊपर मधुमक्खी भी बैठे हुए थे, तो मधुमक्खी बहुत सुगंधित था, आसपास का पूरा एरिया सुगंधित होता था उस फूल की माला से। तो प्रभुपाद कुछ समय के बाद में जब आंख खोले और देखे कि प्रभाकर मिश्र खड़े, तो बड़ा प्रकृति चौक हरे कृष्ण किए कि कब से आए हो पूछे, तो बोला कि नहीं आया लगे, नहीं ठीक है चलते हैं, नहीं नहीं बोले प्रभुपाद आज नहीं स्वामी जी आज आपको बोलना पड़ेगा, उसमें प्रभुपाद टाइटल नहीं मिला था प्रभुपाद जी को है, तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा आज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपको। तो क्या पूछना है पूछो, मैं आपकी गले में जो माला है ये कहाँ से आया, तो ताल रहे इसको बोलना नहीं चाहते थे माला कहाँ से है, उसको ताल के इधर उधर और कुछ बात फेरना चाहते, लेकिन ये बोला नहीं ये चलेगा नहीं, लगभग 40 मिनट ऐसे प्रभुपाद इसको इधर टाल के और कुछ बात करना चाहते, लेकिन वो भी जिद्दी पकड़ा कि नहीं इसको जानना चाहता, ये माला आपकी गले में कहाँ से आया, ये नहीं जब तक नहीं बताएंगे तो मैं आप में जाना, फिर प्रभुपाद जी बाध्य होकर फिर अंत में कहे कि आप प्रकृति में शिक्षक करके मैं जो बात कहूंगा, जो बात है इसका जो रहस्य है आप किसी को नहीं बताओगे, उन्होंने इसलिए किसी को नहीं बताया था प्रभुपाद जब तक प्लैनेट पे थे, कहीं नहीं किसी को नहीं बताऊंगा, ये भी सत्य कर लिए एक बार, बोले मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ आप ब्राह्मण हो, संस्कृत के प्रभाव को, इसी बात को कोई भी किसी के पास में नहीं बताने का है, तो फिर उनको सत्य जैसे करके फिर प्रभुपाद ने कहे कि आज सुबह सुबह मैंने जो आया स्नान करके तिलक आके मैं उसे मंगलाचरण माला जपना प्रारंभ किया, कुछ माला जपने के उपरांत तुरंत ही मैं देखा कि श्याम सुंदर कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए और अपने गले से माला मुझे आलिंगन कर लिया एक बार और माला अपने गले में उतार कर मेरे गले में डालकर फिर अंतर ध्यान कभी ये कहकर कहुपा जी फिर रोने लगे, आंख बंद हो गया उनकी। कहुपा पराक्रम मिश्र कहे कि मेरे सारे घमंड जो था उसी क्षण में चूर चूर हो गया। मैं तुरंत ही उनके चरण कमल अथवा प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी मुझे आप आपके शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो इसी रूप में प्रभुपाद ने केवल एक ही शिष्य स्वीकार किया था, भारत माने पाश्चात्य जगत जाने के पहले झांसी में। इन प्रभुपाद को भी नहीं कहा था कि मैं कभी कृष्ण को देखा बा ये किया, ऐसे कई घटना है प्रभुपाद जी का। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्वयं कभी किसी को नहीं कहा कि मैं कृष्ण को देखा, कृष्ण मेरे से बातचीत किए थे, भाई ये किए थे वो किए थे। इसलिए जो महान परमहंस भक्त होते हैं तो वो अपने भाव को व्यक्त नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा कभी मैं ऐसे कृष्ण देखा, लेकिन वो महान सब जानते कि ये प्रेमी भक्त है, भगवान के महान भक्त है। भगवान की कृपा के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता है। कली कालेर जुगधर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। कृष्ण जिसको शक्तिमान नहीं बनाएंगे, पावर नहीं देंगे, प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने अकेले जो सारा विश्व में प्रचार किया, ये कोई साधारण बात नहीं है। 70 साल उम्र में पानी की जहाज में कार्गोशिप में बैठकर जाना, फिर हार्ट अटैक होना, तीसरे बार कृष्ण आए कि फिर कहे कि चिंता मत करो चलो मैं स्वयं नाव चला रहा हूँ, तो गए। और 70 साल उम्र में पूरे विश्व को 14 बार भ्रमण किए और प्रचार किए, पूरे विश्व में फैलाना हरिनाम को। जहां भी गए वहां मंदिर बन गया, जहां भी प्रभुपाद गए वहां मंदिर बन गया। तो इस प्रकार जो प्रेमी भक्त होते हैं तो उन्हीं ऐसे ही प्रेमी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जब हम सेवा करते रहेंगे तो उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से फिर हम अनर्थ से मुक्त आस्ते 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 हो जाएंगे। अभी भी प्रभुपाद जी प्रचार में लगे हुए हैं, ये नित्य सेवक है। किनके? गौरांग महाप्रभु के। गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी केवल इसी प्लैनेट में प्रचार नहीं करता हरिनाम का, ये एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट ये संकीर्तन पार्टी भ्रमण करते रहता है। और उनकी मुख्य सेनापति कौन है? श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन पार्टी के प्रचारक रूप में ये पीछे पीछे जाते प्रचार करते करते ग्राउंड क्लियर करते। तो इसलिए आज भी गौरांग महाप्रभु की लीला चल रहा है संकीर्तन। कोई पंचतत्व में कोई पांच तत्व कोई शरीर नहीं त्यागे, सब केवल अंतर ध्यान हुए। गौरांग महाप्रभु शरीर नहीं त्यागी गए, नित्यानंद शरीर नहीं त्यागे, वदाई तो शरीर नहीं त्यागे, ये सब केवल संकीर्तन ही लीन अंतर ध्यान हुए। महाप्रभु पुरी में, गोपी ने गोपीनाथ में अंतर ध्यान हुए, नित्यानंद चक्रगांव में, उनके जो बांकाराय में अंतर ध्यान हुए, अद्वैत आचार्य शांतिपुर में महासंकीर्तन में नृत्य करते करते अंतर ध्यान हो गए। जो गौरनीता अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने कहा कि आज आओ सब लोग महासंकीर्तन करेंगे, हजार हजार भक्त आकर नाचते गा रहे, नृत्य कीर्तन चल रहे। और अद्वैत आचार्य भी बड़ा उन्मत्त नृत्य करते करते बस कहाँ गए और कोई दोबारा देखा नहीं है। सुभाष ठाकुर भी ऐसे ही, और गदाधर पंडित वो राधारणी में अंतर ध्यान हुए, जब टोटा गोपीनाथ में राधारणी में अंतर ध्यान। ये लोग कोई पंचतत्व में कोई शरीर नहीं चाहे, इसीलिए ऐसा ही संकीर्तन लड़ा में चल रहे, उनके संकीर्तन चल रहा है। फिर नरोत्तमदास ठाकुर ने जब खेतरी ग्राम में संकीर्तन प्रारंभ किए, गौरव पूर्णिमा फेस्टिवल मनाए, फिर पांच को पांच वहां आविर्भाव होकर नृत्य करने लगे थे सभी भक्तों के साथ में। हजार हजार भक्तों के बीच में फिर पंचतत्व प्रकट हो गए और नाचने लगे उन्मत्त। सब भक्त देख रहे तारी गौरंग आ गए, गदाधर आ गए, नहीं गो सब बड़े भाव के लोग नृत्य आ रहे, महाप्रभु आविर्भाव हो गए, गदर नित्यानंद आ गए, सब ऐसे उन्मत्त कई घंटा कीर्तन करते रहे भाव पागल की तरफ। फिर अंतर ध्यान इसलिए कहते कि अद्यावधि नित्य लड़ा करे गौराराज, कौन कौन भाग्यवान देखिवारे पाए। इनकी लड़ा चल रहा, प्रभुपाद जी भी अपने प्रकार की लड़ा चलाते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट इस प्रचार में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये अनर्थ को निवृत्ति करना साधक है, तो जो स्तर है हमारा आदो श्रद्धा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये लक्ष्य है भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त करना। किसी प्रकार की भौतिक इच्छा पूजा मान प्रतिष्ठा ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, वैष्णव की लक्ष्य नहीं होता। यहाँ तक कि मुक्ति भी हम मुख्य लघुता, इसलिए भक्ति के लक्षण कहते हुए रूपक गोस्वामी प्रारंभ से कहते कि मुख्य लघुता एक लक्षण है। मुख्य को भी तुच्छ समझता है कौन? भक्त। वो मुक्ति को भी तुच्छ समझता है, वो जानता है कि भगवान को आयत्त करने के लिए एक ही वस्तु है, वो है प्रेम। भगवान को प्रेम करने से ही भगवान आयत्त में आ जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न?
हाँ,
इसलिए कहा कि भाई जो कूटनीति करे भी कुछ भी करे जो हरिनाम ले रहा तो वो कनिष्ठ वैष्णव के स्तर कहा गया ना, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, इसलिए कनिष्ठ स्तर पर है इसलिए इसको मन से आदर करना, ये भी कहा गया। जो एक बार भी कृष्ण नाम ले रहा है विधि निषेध पार नहीं करे कूटनीति आदि भी कर रहा है लेकिन क्योंकि हरिनाम ले रहा मने सा इंद्रिय तो इसको मन में आदर करना है, हाथ जोड़ना हरे कृष्ण। लेकिन वो आगे बड़े वैष्णव में जो भक्ति करते मध्यम अधिकारी को पंचांग प्रणाम फिर उत्तम अधिकारी को साष्टांग दंडवत प्रणाम या कहा गया। इसलिए वैष्णव की स्तर बताए महाप्रभु ने, कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। तो उसको आप प्रयास करने पड़ेगा ना, जैसे अनर्थ है फास्ट है लय अर्थात आप कीर्तन में तो आनंद आ रहा नाचने में लेकिन श्रवण करने के समय में सो जा रहे, तो इसको आप सतर्कता आप स्वयं चेकअप करोगे तो इससे चले जाएगा। आप यदि इसको आदत करोगे नहीं सोने का, कठोर आपने के संकल्प नहीं कुछ भी हो जाए क्लास में नहीं सोऊंगा, ये दृढ़ विश्वास होने से कोई असंभव नहीं होता है। आप यदि स्वयं प्रैक्टिस करोगे इसको दृढ़ता के साथ, नहीं सोना है मुझे नहीं सोऊंगा क्लास में, क्लास के पहले अच्छे से मुख धोना पानी मारना बस जल्दी नहीं डाल तो खड़ा हो जाना है उपाय। यदि आप सोचो कि सीरियसली आप इसको अवॉइड कर सकते, आप यदि नहीं सोऊंगा मैं संकल्प ले लिया मैं नहीं सोऊंगा क्लास में, तो हम इसको इतने सीरियस नहीं लेता, अरे सो रहा तो सोते आता नहीं तो क्या करूंगा, नींद आता क्या करूंगा। लेकिन आप जब इसको सीरियसली लेके इसको अवॉइड करना चाहोगे अवॉइड हो जाएगा है, दूर हो जाएगा। वैष्णव के पास में हृदय खोलो, रोते रोते बोलो है, उनके आशीर्वाद लो है, सब कुछ हो सब। ऐसे प्रभुपाद जी कहे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी, बुद्धू के डिक्शनरी में एक शब्द रहता है इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल नहीं सब पॉसिबल है, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितने सीरियस होकर इसको है पालन करते इसको प्राप्त करने के। प्रभुपाद जी कहे कि मेरे पास कुछ नहीं था, 40 रुपया भी जब मैं लगा $5 भी नहीं था, $5 होता कुछ नहीं, कार्गोशिप में जाकर इस संस्था को स्थापना कर दिया पूरा विश्व ने, और कौन सा फिर असंभव कौन सा चीज हो सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, हमारा सीरियसनेस के ऊपर निर्भर करता है हम कितने सीरियस उस स्थिति के। अब यदि संकल्प ले लिया नहीं सुनगा नहीं सुनगा है, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा सारी जिंदगी आपके ऊपर, लेकिन जो सीरियस हो गया और एक ही दिन में भी इसको समाप्त हो सकता है। भक्ति ऐसे ही चीज है, महाराज खट्टांग ने 2 सेकंड में पहुंच गए भगवत धाम है, देवता लोग को सोच पूछे कि मेरा परमायु कितने, बोले कि बस वही समाप्त हो तब तुरंत ही बस एकाग्र चित्त से भगवान को ध्यान कर बैठ गए बस चले गए। भक्ति ऐसा ही है, कितने सीरियस आप है वो देखा जाएगा, सीरियस नहीं है तो खाम कह लिए तो चल रहा बस चलते रहेगा ऐसे जन्म जन्मांतर, लेकिन सीरियस हो गया तो बस एक ही जन्म समाप्त हो गया। प्रभुपाद ने इसलिए कहे कि कितनी जन्म ऐसे माया की गुलामी करते करते आए हो, एक जीवन तो कृष्ण की सेवा करो, एक जीवन गुरु कृष्ण में समर्पित हो जाओ, फिर दोबारा इस जन्म के चक्र में नहीं भटकोगे, इसलिए समर्पित होना चाहिए भगवान गुरु के चरण में। तो गुरु जी के आदेश को पालन करूंगा, गुरु जी प्रसन्न है, जब आप मैंने सोचोगे कि नहीं मैं भागवत कक्षा में सोता हूं तो मेरे गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे इस काम में, मुझे भागवत कक्षा श्रवण करने के लिए कहा गया तो मैं श्रवण करूंगा नहीं सोऊंगा, सीरियस हो गया तो उसके लिए नहीं हो तो भगवान के पास में प्रार्थना किया जाकर, नहीं प्रभु मुझे कृपा करो, तो सीरियस हो जाओगे तो आप ये अपने आप चले जाएगा। ये सारे अनर्थों को आप कितने सीरियस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रो रो कर वैष्णव के पास में बोलना मैं कैसे सुधारूंगा, आपने इसके लिए जो सीरियस रोगे बोले मेरी कृपा कीजिए वैष्णव ठाकुर, हे कृष्ण मुझे कृपा कीजिए, मैं अनर्थ कैसे नष्ट होगा, मैं इतनी बड़े पापी हूं, आमी तो दुर्जन सदा कामरत किचु नहीं मरो गुण है, गोपीनाथ सकल प्रचेषा होल विफल एखन भरोसा तुम्हें, सारे प्रचेषा विफल हो गया आप ही भरोसा, हे गोपीनाथ मेरी सुधारो मुझे सुधारो, रोगे भगवान सामने रोग है, आंख से अश्रु बहेगा, गोपीनाथ सुनने के लिए बाध्य होंगे। अब भगवान आपको अपना लिए तो फिर कौन सा अनर्थ रहेगा आपके पास है। इसलिए अनर्थों के लिए सीरियसनेस चाहिए, उसको दूर करने के लिए है, ठीक है। तो रूप गोस्वामी सब समय दो बात कहते हैं, आप प्रयास भी करो और कृपा के ऊपर आशा रखो, वैष्णव की कृपा तथा कृष्ण की कृपा दोनों की है। किसी प्रेमी भक्ति आपको प्रेम दे सकता है, प्रेम जिसकी संपत्ति है वो आपको दे सकता है, जिसको जो प्रेमी भक्त है वो आपको प्रेम दे सकता है। जैसे कोई करोड़ों रुपया किसके पास है तो आपको लाखों रुपया दे सकता है, उसके पास है नहीं आप तो उसके पास वो हजारपति है तो उसको लाखों मांगोगे तो कहां से देगा। तो इसलिए जो प्रेमी भक्त है वो आपको प्रेम दे सकता है, बा कृष्ण स्वयं दे सकते हैं। कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है, कहते कृष्ण स्वयं प्रेम देते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में प्रेम नहीं देते, भक्त के रूप में आते हैं। इसलिए कृष्ण को भक्त के रूप में आना पड़ा, किस रूप में, गौरांग के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कृष्ण प्रेम प्रदायते, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो महावदान्य बनकर आए कृष्ण गौरांग के रूप में, तभी प्रेम प्रदान किए हैं। स्वयं कृष्ण मुख्य देते हैं, जब वो ईश्वरता के ईश्वर के रूप में रहते तो फिर वो मुख्य तक देते हैं, लेकिन जब भक्त बनकर वही कृष्ण आते तो फिर राधारानी के भाव को अंगीकार करके प्रेम देते हैं। प्रेम संपत्ति राधारानी का है, उसको राधारानी दे सकती है, बा शुद्ध भक्त जिनके पास में प्रेम है वो दे सकते हैं। कृष्ण स्वयं प्रेम जब देते तो भक्त भाव को अंगीकार करके आते हैं, गौरांग के समान आकर फिर प्रेम को बांटे हैं। तो इसलिए हमें साधन भक्ति में साथ प्रयास करना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ 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 क्या किसी महान वैष्णव की कृपा, कृष्ण की कृपा के प्रति आशा रखना चाहिए। तो उपाय ने कहा करते कि कोई कोई सोचता कि नहीं ऐसा कृपा में ही हो जाता है, कृपा में हो जाता है, कभी कभी बाई चांस ऐसे बहुत रेयर उदाहरण होता है किसी के आशीर्वाद में मिल जाता प्रेम भक्ति, लेकिन बहुत रेयर है। जैसे ज्ञानी जेल सिंह है, 10 क्लास पास किया था लेकिन भारत के क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। ये सब समय जरूरी नहीं कि आप भी प्रेसिडेंट बन जाओगे, आप बोलोगे मैं भी 10 क्लास पास किया तो मैं भी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, बा वो प्रेसिडेंट बन गया तो कई उसको पीएचडी का अपने 10 क्लास पास किया पीएचडी, लेकिन कई ऑनरारी यूनिवर्सिटी में जाता था, स्पीच देता था, प्रेसिडेंट आया तो उसको ऑनरारी पीएचडी डिग्री भी दिया जाता था है। डॉक्टर ज्ञानी जल सिंह बोल रहे, कई यूनिवर्सिटी उसको ऑनरारी डिग्री दिए, हरे कृष्ण। तो इसमें मिल जाता, तो इसी प्रकार कभी कभी होता है किसी जीवात्मा को अहेतुक कृपा हो जाता है किसी वैष्णव का, बा किसी भगवान का, किसी महान वैष्णव नारद या कोई ऐसे महान वैष्णव के सामने आ जाता तो आशीर्वाद दे दिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो गया है। कल जैसे बोलते थे देवानंद पंडित को आशीर्वाद दे दिए, कौन बक्रेश्वर पंडित, प्रेम प्राप्त हो गया। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ता है, इसके साथ साथ भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है और शुद्ध भक्तों के चरण में प्रार्थना करना पड़ता है, फिर वो दे सकते हैं। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती अच्छे आमित कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, मैं तो भटक रहा हूं पीछे पीछे। इसलिए साधन भक्ति करना, साथ साथ कृपा के ऊपर भी आशा रखना, महान वैष्णव के दोनों साथ में, ठीक है। और कोई प्रश्न, तो वही तो कहे कि भाई इसका लय के बाद में विक्षेप, ये दूसरा अनर्थ जो बाधा है, कृष्ण दिखाए कि विक्षेप, विक्षेप का अर्थात मन इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसको विक्षेप, तो वही तो कहा गया ना। तो वो सभी आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है, विक्षेप हो रहा मन इधर उधर जा रहा है, खड़ा हो जाना चाहिए, जोर जोर से जप करना चाहिए है। उससे उस प्रकार व्यक्ति कहते हैं जोर से जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से जप करने के, मन को चांस नहीं देना तो कुछ इधर उधर भटकने के साथ है। देख रहे भक्त के सामने बैठे इधर अब जोर से करेगा तो पागल सोचेंगे लोग, सबको डिस्टर्ब होगा तो फिर थोड़ा दूर चले जाए, ऐसा नवा देगी जब करें, लेकिन जोर से जब करना चाहिए है? कोई भी बात जब आप सीरियस बन जाओगे वो हट जाएगा, वो चले जाएगा, सीरियस हो गए चले जाए। जैसे वो भागवत कक्षा में नहीं जा रहा तो सीरियस बन जाएगा तो नहीं जाएगा, वो अभ्यास करेगा प्रैक्टिस एक दो चार दिन, लेकिन पानी तुरंत पानी धो के क्लास में बैठने के पड़े मुख अच्छे से धोना फ्रेश होके फ्रेश हो साथ में बैठना तो वे प्रैक्टिस करोगे तो दूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये मन इधर उधर जा रहा तो जोर जोर से, इसी प्रकार व्यक्ति को नियोफाइट लोगों को इसलिए जोर जोर से जप करना, जोर जोर से जप करना, जोर जोर से जप करने से फिर मन आस्ते 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 स्थिर हो जाएगा, उसको चांस नहीं मिलेगा इधर उधर जाने के। जब तक व्यक्ति सत्वगुण में नहीं आया, स्थित सत्य प्रसिद्ध थी, सत्वगुण में नहीं आया एक जगह बैठकर फिर जप करना बड़ा मुश्किल होता है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कुछ करना चाहेगा, कुछ दिखाना चाहे तो वो फिर नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में है ये इंट्रोड्यूस किए, क्या वॉकिंग जप, जोर जोर से जपते हुए वॉकिंग करो, बस वो रजोगुण है सब रजोगुण ही, तो उनको वॉकिंग करना ही जरूरी है। ये बैठ के नहीं जप कर सकते, बैठने से फिर प्रगड़प करेंगे नहीं तो किसी झगड़ेंगे सो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, तमोगुण होगा तो सो जाएगा, रजोगुण ही होगा तो फिर माइंड इधर उधर जाएगा। वो पांच मिनट बैठा होगा तो नहीं बोला और कुछ करना चाहेगा, वो फिर उठी भाग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहेंगे नहीं, दो घंटा डेली वॉकिंग, बस वॉकिंग करो जब करो ठीक है। बिहेवियर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे होना चाहिए, हाँ कुटी नाटी। जैसे महाप्रभु ने कहा कि कुटी नाटी जीव हिंसन नहीं क्या निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन पूजा मान प्रतिष्ठाति जत उपशाखा, मैंने इसे उपशाखा है भक्ति लता जब देख रहे हैं, लेकिन भक्ति लता नहीं है इनकी, वहां से भक्ति लता कि नष्ट होता है। तो आप जो कहीं कुछ बोलना चाहते हो सीधे बोलो, सत्य बोलो। कभी कभी लोग कहते हैं कि सत्यंग सत्यंग वादो प्रियंग वादो, नीति शास्त्र कहते प्रिय बोलो, सत्य कहो लेकिन प्रिय उसके जो प्रिय है तो बोलो, अप्रिय है तो मत बोलो। लेकिन वैष्णव दर्शन में इसको प्रभुपाद ने स्वीकार नहीं करते, प्रभुपाद ने कहते कि ऐसा नहीं, वैष्णव को सत्पूर्वक कहना है, सत्य जो है तो बोलना ही है। अवश्य कभी कभी सत्य किसी को कहता हम इसका डेफिनेशन भी जानना चाहिए। सत्य किसी को कहते हैं, जो धर्म को रक्षा करता है, सत्य का धर्म, सत्य का कर्तव्य क्या है, धर्म को रक्षा करना। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो बोल दिए कि नर वा गुंजरे क्या अस्वस्थमा हत इति, मैं जानता नहीं अस्वस्थमा को बोलती हूँ क्या कि मनुष्य है, मैं ये जो कहे ये किसकी आदेश था, ये युधिष्ठिर महाराज आपने मन से नहीं कहे, आदेश किसका था, कृष्ण का था है? तो कृष्ण क्या है, धर्म के रखे, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म किसको कहते हैं, जो भगवान ने प्रणयन किया। इसलिए कभी कभी भक्तों की भगवान के निर्देशन में कभी ऐसे कहता बार, कभी कभी देखे हैं सनातन गोस्वामी जेल में थे, जेल में थे तो जेल से निकालना चाहे हुसैन से जेल में डाल के चला गया उनको, प्राइम मिनिस्टर बनने स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं मैं रिजिग्नेशन, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा मैं, तो जेल में डाल दे के चला गया जो ओडिशा, अब वहां से निकालने के लिए प्रयास किया तो झूठा उनको बोलना पड़ेगा, जेलर को बोलते थे कि यार मुझे छोड़ दो, 5000 पले उसको 5000 स्वर्ण मुद्रा दिखाए, ये ले लो मुझे छोड़ दो, मैं मक्का मदीना जाऊंगा। वो मक्का मदीना थोड़ी जाने वाले थे, लेकिन जानते कि मुस्लिम है, उसको प्रभाव करने के लिए कहते कि मैं कहां जाऊंगा, मक्का मदीना चले जाऊंगा, ये देश में नहीं रहूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, 5000 स्वर्ण मुद्रा ले लो, तुम्हारा फायदा भी हुआ, ये ले लो मुझे गंगा पार कर दो, मैं चले जाऊंगा, ये राज्य में नहीं रहूंगा, तुमको कोई भय नहीं रहेगा। हुसैन शाह को बोलना कि वो जाते गया था बाहर और वो लेट्रिन करने के लिए गया बा कुछ बा, तो वहां से फिर वो जो गंगा में जंपिंग कर दिया, उसका पैर में बेड़ी था, हाथ में बेड़ी था, फिर भी जंप लंबी कर दिया तो गंगा में बस गया, बह गया बा बोल देना, लेकिन उसको फिर भी डर विश्वास नहीं। फिर सनातन गोस्वामी उसके सामने 7000 रुपया 7000 स्वर्ण मुद्रा रख दिया और फिर बोलने लगे अभी इसको ले लो और मुझे तुरंत छोड़ दो, कल्याण तुम्हारा होगा, लेकिन तुम जान जो देखे कि फिर भी राजी नहीं हो रहा है, सनातन गोस्वामी फिर भी पॉलिटिक्स भी शुरू कर दिए थोड़ा है, कहे कि देखो मैं किसी भी मैंने राजा मुझे जेल में डाला क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी वो राजा वापस आएगा मैं राजी हो जाऊंगा, ठीक है मैं तैयार हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए, और काल में पोस्ट में था तुम मेरे सामने क्या था, अभी मैं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो तुम्हारा हालत क्या होगा, समझ रहे हो ना। समझ रहे हैं? अभी तुम साधारण छोटा सा जेल का जेलर है, तो मैं यदि फिर दोबारा राजी हो जाऊंगा उस संसार के, फिर मैं दोबारा प्रधानमंत्री सीट में बैठ गया, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा? तुमको हुसैन साहब बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। मैं तुमको एक दिन में यहाँ से एक घंटे, तो फिर मैं भलाई के लिए तुम बोल रहा हूँ 7,000 सोना मुद्रा रख लो, मुझे पार कर दूंगा, तुम्हारा भलाई होगा, हुसैन साहब कुछ नहीं करेगा। फिर वो राजी हो गया, फिर सनातन गोस्वामी को पार करा दिया जेल से निकल के। लेकिन ये सब जो कार्य किया जाती कभी कभी दिखाई पड़ता है ये कूटनीति जैसे, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की इंद्रिय तृप्ति के लिए, महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। सनातन गोस्वामी जेल से छूटे और आकर गौरांग महाप्रभु को मिले कहाँ, वाराणसी में। महाप्रभु इनको शिक्षा दिया, फिर वृंदावन भेज दिए। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी हम यदि ऐसे उल्टे थोड़ा युधिष्ठिर महाराज की तरफ तथा कथित दिखाई पड़ता कि बाह्य दृष्टि झूठ बोल दिए, बस सनातन गोस्वामी इस तरफ दिखाई पड़ेगी कुट में, ये इसको नहीं कहते कि ये इसकी तुलना नहीं किया जाता है साधारण झूठ के साथ है? कुछ भी हुआ, हम यदि भगवान के तुष्टि के लिए भगवान की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं उसी माध्यम से, वो भक्ति है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम, जो कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा है तो प्रेम है, चाहे दिखाई पड़े बाहर से सही कुटी नदी जैसे, कुटी नदी नहीं होती। लेकिन यदि हम आप इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारा पूजा मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और कहीं कुटी नदी करते हैं तो उसी को कहा गया, उसी से भक्ति नाश होता है। स्वयं को ऊपर उठाने के लिए, पूजा मान प्रतिष्ठा को समाज में प्राप्त करने के लिए कभी कुटी नदी करते हैं, ठीक ना? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
केवल दबाओ, अरे दबाओ ना उसको माइक के, माइक के इसको दबाओ ना, उधर दबाओ।